हरे कृष्णा। आज तीसरे सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भगवान कौन हैं, भगवान एक हैं या अनेक हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भारत देश में भगवान को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में, भगवान की विशेष करके पहचान को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे भगवान के अस्तित्व के बारे में, और भगवान के अस्तित्व के बारे में हमने देखा कि भगवान वास्तव में अस्तित्व में हैं। उसके लिए सर्टेन पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, और कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री से भी नोटिस किए होंगे। तो भगवान के अस्तित्व के बारे में ये जब पता लग गया तो वास्तव में भगवान कौन है, कैसे उनको जाने, ये जानना बड़ा आवश्यक है, तरीका जानना बड़ा आवश्यक है। तो भगवान को जानने का तरीका क्या होता है, उसको जानेंगे श्रवण के द्वारा। हम भगवान का दर्शन करने का प्रयास करेंगे, भगवान के बारे में सुन करके उनको जानने का प्रयास करेंगे। सो भगवान के बारे में विशेष करके शास्त्रों में बताया जाता है, और शास्त्र को कहा जाता है कि शास्त्र भगवान की वाणी है, भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है। शंकराचार्य जी भगवद्गीता के महात्म्य में लिखते हैं, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्रिनिश्रुता। ये भगवद्गीता साक्षात भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं। सो इसलिए गीता को समझने के लिए या शास्त्र को समझने के लिए हमको ये जानना आवश्यक है कि शास्त्र जो है भगवान की वाणी है। इनफैक्ट अगर हम इस जगत में किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, हर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उससे संबंधित कुछ ग्रंथ या कुछ पुस्तकें उनको पढ़ते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, और उनके द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम मेडिसिन पढ़ना चाहें तो मेडिसिन के बुक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहें तो इकोनॉमिक्स के बुक्स पढ़ेंगे, इस तरह से। उसी तरह से अगर हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए, जिससे कि हम भगवान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि शास्त्र हमको भगवान को देखने की दृष्टि देता है। जब तक हमारे आँखों में, जैसे हम अपनी ये चर्म चक्षुओं से इस प्रकट जगत को देख पाते हैं, उसका एकमात्र कारण ये है कि सूर्य हमारी आँखों को उसको देखने की रोशनी देता है। अगर सूर्य न चमकता रहे, अंधेरा रहे, कल आप लोगों ने देखा होगा कि वो प्रोसिक्यूटर को जो डिफेंडेंट है वो बुलाता है कि आप आइए और लाइट बंद कर दीजिए, तो लाइट बंद करके वो पूछता है प्रश्न कि कैन यू सी मी, और वो बताते हैं कि मैं आपको देख नहीं सकता हूँ। कैन यू सी द जज, जज को देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। कैन यू सी योर सेल्फ, क्या आप अपने आप को देख सकते हो, तो कहती है कि नहीं देख सकते हैं। तो देखने के लिए हमको किसी न किसी चीज़ पे आश्रित होना पड़ता है। चर्म चक्षुओं से देखने के लिए हमें सूर्य पे आश्रित होता है, उसी तरह से भगवान को जानने के लिए, देखने के लिए हमको दिव्य चक्षु जो शास्त्र प्रदान करते हैं उसके ऊपर आश्रित होना पड़ता है। और दिव्य चक्षु हमको वो ज्ञान देते हैं जिससे हम दिव्य विषय वस्तु को जान समझ सकते हैं, और इस जगत में दिव्य उसको कहा जाता है जो पारलौकिक होता है, इस भौतिक जगत की वस्तु नहीं होती है। तो भौतिक जगत की वस्तु न होने के कारण हम भौतिक जगत के किसी भी इंस्ट्रूमेंट से भगवान को जान पाना, समझ पाना कठिन है, पर हम उनको ज्ञान की दृष्टि से देख सकते हैं। तो ज्ञान की दृष्टि से हम क्या क्या देख सकते, कैसे देख सकते, देयर आर सर्टन लॉजिकल फीचर्स। उस लॉजिकल फीचर में ये एक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण का सिद्धांत। तो हम लोग देखते हैं कि इस जगत में कुछ भी घटना घटित होने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई कारण लगता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इसमें बताया है कि एक वृक्ष है, और वृक्ष क्यों बढ़ रहा है, वृक्ष बढ़ता हुआ दिखाई देता है ना, और वृक्ष मरता हुआ भी दिखाई देता है। तो वृक्ष बढ़ता कब है और मरता कब है? फॉर दैट मैटर, व्यक्ति जो है, जीव जो है, वो बढ़ता कब है और मरता कब है? मरने का मतलब डिसइंटीग्रेट होना। तो उसी तरह से जैसे हमारे शरीर में आत्मा जब प्रविष्ट रहती है तो हमारा शरीर छोटे से लेकर के बड़ा होता चला जाता है, बूढ़ा होता है, 6 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और अंत में नष्ट हो जाता है। उसी तरह से प्रत्येक जीवों का शरीर है, चाहे वो वृक्ष योनि में हो चाहे किसी में भी हो। तो वृक्ष बढ़ता क्यों है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा होती है, और जब आत्मा उस वृक्ष के शरीर को त्याग देती है तो वृक्ष भी सूखना शुरू कर देता है। तो उसके अंदर ग्रोथ, जहाँ कहीं भी हम ग्रोथ का सिम्टम देखते हैं, जहाँ कहीं भी हम चेतना देखते हैं, हमको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे आत्मा है। भगवद्गीता में भगवान बताते हैं, अभी देखिए ये पंखे से हवा निकल रही है ना, पर ये पंखे से हवा निकालने का कारण कौन है? पंखा घूम रहा है तब हवा निकल रही है, लेकिन उस पंखे को घुमाने वाला कौन है? बिजली है ना। तो हमको बिजली उस पंखे में दिखाई नहीं देती है, आत्मा शरीर में दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम उसके लक्षण से जानते हैं कि चूंकि ये ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, इसके अंदर विघटन आ रहे हैं, इसके अंदर बदलाव दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आत्मा उसमें मौजूद है। वो चल रहा है, फिर रहा है, चेतन है, क्योंकि आत्मा है उसमें। उसी तरह से पंखा जो चल रहा है उसके पीछे बिजली उसका कारण है। उसी तरह से अगर बाण चल रहा है तो इसका मतलब बाण को फेंकने वाला कोई है, और फेंकने का इंस्ट्रूमेंट जो उसका है वो धनुष है उसका, तो बाण के ऊपर उसके धागे पे वो बाण को रख करके धनुष के धागे पे खींच करके उसको छोड़ रहा है। सो देयर इज सम कारण जिसके कारण वो इफेक्ट बाण जो है चलता हुआ या टारगेट को हिट होता हुआ दिखाई देता है हमको। ऐसे ही इस जगत में हम देखते हैं कि कठपुतलियाँ होती हैं, कठपुतलियाँ जो हैं उनको नचाने वाला कोई होता है। कठपुतलियाँ अनेक प्रकार के डांस करती हैं, लेकिन अपने आप करती हैं क्या? Somebody is there to pull the string. कोई ना कोई है जो उनका धागा खींचता है, जिसके कारण वह हाथ उठाते हैं, डांस करते हैं, पैर उठाते हैं, है ना। उसी तरह से इस जगत में हम देखते हैं कि भगवान को देखने की दृष्टि प्राप्त करना चाहिए। अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो हमको ये जगत देख करके भगवान हैं ऐसा पता होता है। तो यहाँ पे भगवद्गीता के एक श्लोक के आधार पर बता रहे हैं कि मत्तः परत्रम ना अन्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगण एव। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये जानो कि इस जगत में मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, और इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है चर अचर सब कुछ मुझ पे आधारित है। भगवान पे क्यों आधारित है? भगवान आगे जा करके हम लोग इसके आगे के इसमें डिस्कस करेंगे कुछ स्लाइड्स के आगे जा करके कि इस जगत में जो कुछ भी प्रकट है सबके स्रोत कौन है? भगवान है। चाहे वो जड़ वस्तु है या चेतन वस्तु है, कोई डेमीगॉड्स है, कोई ऋषि महर्षि है, सब लोग कहाँ से प्रकट होते हैं? अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सबको प्रकट करता हूँ, भगवान कहते हैं। लेकिन भगवान हमको दिखते नहीं हैं। कैसे नहीं दिखते हैं? जैसे ये माला है, माला पे मणियाँ हैं, ये मणियाँ हमको दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसके अंदर जो सूत्र है, धागा है, वो दिखाई नहीं देता है। पर धागा अगर टूट जाए तो ये मणि सब क्या हो सकती है? बिखर करके गिर जाएगी। उसी तरह से भगवान जो हैं इस जगत को धारण किए हुए हैं, हाँ, और जिस तरह से मोती धागे में पिरोए होते हैं उसी तरह से संपूर्ण विश्व भगवान पर आश्रित है। पर हम ये चीज़ रियलाइज़ कब कर सकते हैं? इसको रियलाइज़ करने का कोई तरीका होता है, देर इज़ सम प्रोसीजर। वो प्रोसीजर में से एक प्रोसीजर है कि हम सेवा के द्वारा भगवान को जान सकते हैं। इसीलिए शास्त्र में भगवान के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को जानना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरतादः। भगवान को अगर कोई जानना चाहता है तो अपने इंद्रियों से हम भगवान को टटोल नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान ने इन इंद्रियों में से एक इंद्रिय है जिसको एक ऐसी शक्ति प्रदान किया है कि अगर उसके ऊपर भगवान का नाम वो वाइब्रेट करता है तो वो भगवान को रियलाइज कर सकता है। और दिस इज नॉट जस्ट ए थ्योरी। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि अगर आप भगवान का नाम जप करेंगे तो नामे प्रस्फुटित है रूप गुण लीला। भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, सब कुछ का ज्ञान जो है केवल ये हरि कृष्ण महामंत्र जपने मात्र से आपको रियलाइज हो जाएगा। पर ये जपना जो है फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ होना चाहिए। जपने से हमारे हृदय के अंदर जितने भी मिसगिविंग्स हैं, जितने भी अभद्र हैं, वो सब जब नष्ट हो जाते हैं, जैसे मिरर के ऊपर से आईने के ऊपर जो डस्ट लग जाती है तब हम अपना तस्वीर उसमें नहीं देख सकते हैं। पर जब उस डस्ट को हम झाड़ देते हैं, पोछ देते हैं, तो हम अपना तस्वीर उसमें पूरी तरह से देख सकते हैं। उसी तरह से जब भौतिकता का कलमश, भौतिकता के जो दोष हैं, वो दोष जब हमारे हृदय से पूरी तरह से निकल जाते हैं, तो वो निकलते कैसे हैं? मिरर को तो हम कपड़े से पोंछ देंगे, पानी लगा करके पेपर से पोंछ देंगे, लेकिन हम हृदय को तो साबुन तेल या इत्यादि से तो नहीं धो सकते, डिटर्जेंट से तो नहीं धो सकते हैं, तो कैसे धोएंगे? सर्व आत्मा स्नापन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण संकीर्तन जो है, भगवान के नाम का सम्यक कीर्तन जो है, वो क्या करता है? सर्व आत्मा, सभी आत्मा को स्नापन्नम, पूरी तरह से स्नान करा देता है। जैसे हम स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं, उसी तरह से भगवान का नाम जप करने से आत्मा शुद्ध होती है। जब आत्मा शुद्ध होती है, तब जाकर के वो भगवान को रियलाइज कर सकती है। तो आत्मा के शुद्धिकरण का कार्य आरंभ होता कब है? जब हम भगवान का नाम अपनी जीवा से लेना आरंभ करते। ये पहली सेवा है, भगवान की सेवा करना आरंभ करेंगे, और सबसे पहली सेवा है कि भगवान का नाम जो है जीवा से लेना शुरू करो। ये भगवान का नाम लेना किसी अन्य व्यक्ति के नाम लेने के समान नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि नाम और नाम, भगवान का नाम और भगवान दोनों कौन है? साक्षात सेम है। नाम नाम अकारी, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, अलग अलग नहीं है। सो भगवान और भगवान के नाम में कोई भिन्नता नहीं है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान अपने नाम रूप में हमारे जीवा पर वाइब्रेट करते, डांस करते हैं। एंड इफ वी आर एक्चुअली अवेयर ऑफ दैट रियलिटी, फुल कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम ये सोच रहे हैं कि जैसे हम अपने घर में किसी मेहमान को बुलाते हैं, तो वी टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, है ना, उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। पर भगवान को हम अगर अपने जीवा के प्रांगण में बुला रहे हैं और फिर नाम ले रहे हैं, पर हमारा मन कहीं और भटक रहा है, तो हम भगवान को केयर नहीं करते हैं। तो भगवान जो है, यद्यपि हमारे जीवा पे नाम रूप में प्रकट हैं, लेकिन अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। जैसे देखो, सिंपल उदाहरण है, अगर हमारा मन किसी और चीज़ में लगा हुआ है, कोई व्यक्ति और कुछ बता रहा है, वो शब्द ध्वनि हमारे कान में पड़ती है, लेकिन हमको रजिस्टर नहीं करती है, है ना। हमारी आंखें खुली हुई हैं और हम किसी चीज़ में और लगे हुए हैं, तो हमारे सामने से कोई गुजर जाता है और हम उसको ध्यान नहीं दे पाते। बाद में वो पूछता है, यार तुम्हारे सामने से आया मैं, तुमने मुझे पूछा तक नहीं, पहचाना तक नहीं। और हम पूछते, नहीं नहीं तुम तो गए नहीं, मैं तो वहीं पे था, देखा नहीं आपको। हाँ, रीज़न इज दैट आई एम नॉट फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड। उसी तरह से जब व्यक्ति भगवान पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं करेगा, तो उनको रियलाइज करना मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? भगवान के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उस पर पूरी तरह से हमको ध्यान हमारा जो है उस पर लगा रहना चाहिए। नाम जप रहे हैं, तो जो साउंड वाइब्रेशन निकल रहा है, उसको हमको कान से सुनना चाहिए। अगर कान को हम सुनने के लिए नहीं लगाते हैं, तो निश्चित है कि डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, क्योंकि माइंड जो है फिर किसी और चीज़ में एंगेज हो जाएगा। इसीलिए जब तक हम नाम वाइब्रेट करते हैं, तब तक हमको उसको कान से सुनते रहना चाहिए। भगवान के विषय में ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान के विषय में ज्ञान जो है, हम प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं। एक्चुअली तत्व संदर्भ नामक एक पुस्तक है, जिसको जीव गोस्वामी ने लिखा है। जीव गोस्वामी उसमें 10 तरीका बताते हैं, 10 तरीका है जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको प्रमाण कहते हैं, 10 प्रमाणस। पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग में केवल 3 बातों पर ज़्यादा चर्चा करते हैं। आज हम लोग 3 बातों पर ही चर्चा करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैक्सिमम समय क्या होता है, ये 10 टाइप है जिससे हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो कभी कभी अगर आप लोग कंटिन्यू रखेंगे ये डिस्कशन, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे होता है नंदीकेश्वर शिव जी के मंदिर में, तो वहाँ अगर आप आएंगे, तो चर्चा के दौरान ये सारे विषय हम जान सकते हैं। सो यू आर इन्वाइटेड टू अटेंड दैट क्लास ऑल्सो इफ़ यू आर सो डिज़ायरस। कहते हैं ज्ञान प्राप्ति का 3 तरीका होता है, उसमें है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सो प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? जिस जगत में हम रह रहे हैं, उस जगत को हम प्रमाण सहित कैसे समझ सकते हैं? सो 3 प्रकार का ज्ञान है। एक तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट परसेप्शन, हम किसी चीज को देख करके समझते हैं कि ये वस्तु यहाँ पर है। पर कभी कभी जैसे ये दीवार के पीछे भी कुछ वस्तु है पर हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दैट वस्तु डजंट एग्जिस्ट। हमारे बगल वाले रूम में, उसके बगल वाले रूम में दूसरा कोई रहता है पर एक दीवार से, पर हम जानते हैं कि वहाँ कोई रह रहा है, इसलिए आई अप्रिशिएट कि वहाँ कोई है। पर अगर हमने नहीं देखा तो हम ये नहीं बोल सकते कि वहाँ कोई है नहीं, दैट पर्सन एग्जिस्टिंग, लेकिन हमको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है। तो प्रत्यक्ष यद्यपि ज्ञान प्राप्ति का उत्तम तरीका है लेकिन अपूर्ण है, पूरा ज्ञान नहीं देता है। क्यों पूरा ज्ञान नहीं देता है? क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान हम जिनसे प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारी इंद्रियों से, हमारी इंद्रियां जो हैं पंच इंद्रियां, ये पांच ज्ञानेंद्रियां जो हैं, वो ज्ञानेंद्रियां अपने आप में चार प्रकार के दुर्गुणों के कारण या दोषों के कारण वो क्या है, वो कंप्लीट ज्ञान नहीं दे पाती हैं। और ये दोष क्या है उसको कहते हैं दोष चतुष्टय, चार प्रकार के दोष जिनके कारण हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा परम सत्य को नहीं समझ सकते। कुछ लोग कहते हैं ना भगवान दिखाओ तब मैं मानूंगा भगवान है। अभी भगवान तो यहाँ पे अनेक रूप में है। भगवान बताते हैं सातवें अध्याय में भगवद गीता के कि रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्षाम यजुरेव च, और भी बहुत सारे श्लोक में बताते हैं भगवान की मैं किस तरह से किस रूप में प्रकट हूँ। और हम लोग हर रोज उन सब चीज़ों से कम अक्रॉस होते हैं। पानी पीते समय हम सोचते हैं कि पानी के अंदर जो स्वाद है ये कौन है। भगवान कहते हैं जो भी लिक्विड है उसके अंदर मैं स्वाद हूँ। तो स्वाद मिलता है कि नहीं पानी पीने में आपको, बताइए? पर वो स्वाद कौन है? साक्षात कृष्ण है। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, सूर्य और चंद्रमा की जो रोशनी है वो रोशनी कौन है? भगवान है। भगवान कहते हैं वो रोशनी मैं हूं। हम में से कौन ऐसा है जो सूर्य और चंद्रमा को डेली नहीं देखता है? रात में चंद्रमा दिखाई देता है, दिन में सूर्य दिखाई देता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अंधा रहे तो उसको दोनों ही नहीं दिखाई देते हैं, है ना? या कोई व्यक्ति अज्ञान के रूप में अंधा रहे, अपने अज्ञान के कारण वो भगवान को देख नहीं सकता। भगवान इस जगत में साक्षात सर्वत्र मौजूद हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु अपने शक्ति के बल पे तीनों लोकों का साम्राज्य प्राप्त कर लिया था, सारा वर्ल्ड उसके कंट्रोल में था, और उसकी 3000 बरस तपस्या करने के बावजूद भी, इतनी उम्र तो उसने तपस्या की, उसके बाद कितने सालों तक जिया हो, इतना होने के बावजूद भी उसको ये नहीं पता कि विष्णु कहाँ पर है। और विष्णु भगवान का नाम इसलिए है क्योंकि विष्णु का अर्थ होता है सर्वत्र व्याप्त, ऑल परवेडिंग। आपने सुना होगा गॉड इज ऑल परवेडिंग, है ना? भगवान सर्वत्र है, लेकिन वो सर्वत्र भगवान को ढूंढ रहा है पर उसको भगवान कहीं भी दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि राक्षसी है। पर उसका छोटा बेटा जिसकी उम्र अभी 5 बरस भी नहीं हुई है, और वो क्या देखता है भगवान को? हर जगह दिखाई देता है उसको भगवान, जहां देख रहा वहां यतो यतो यामी ततो नरसिंह, मैं जहां भी देखता हूं वहां नरसिंह देव प्रकट है ना? उसका पिता ने पूछा क्या इस खंभे में भी प्रकट है? कहा हाँ खंभे में भी प्रकट है। तो टेस्ट करने के लिए गया और सत्यम विधातुम निर्भृत्य भाषितम, अपने सेवक प्रहलाद के, अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान यद्यपि कहीं भी मौजूद हैं फिर भी जैसे खंभे में हैं बोला, तो खंभा तोड़ करके जब उसने खंभा तोड़ा तो भगवान खंभे से सभा में आ गए। तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, है ना? भगवान को प्रकट होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब व्यक्ति उनको भगवान को सहायता के लिए पुकारता है तो भगवान किसी भी क्षण कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र हैं, पर देखने की दृष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? ये चार दोष के कारण। ये है भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणापाटव। भ्रम किसको कहते हैं? एक वस्तु को दूसरी वस्तु जानना भ्रम कहलाता है। जैसे अंधेरे में जा रहे हैं, रास्ते में एक रस्सी पड़ा हुआ है मोटा सा, उस रस्सी को देख करके हमको भ्रम होता है कि ये सांप है ना? जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर की कथा में आता है, बिल्वा मंगल ठाकुर जो है वो चिंतामणि से मिलने के लिए जाता है, बहुत बारिश होती रहती है, और ऐसी बारिश में भी वो यमुना को जो तूफान से पूरी तरह से भरी हुई है उस यमुना को भी क्रॉस करके, कैसे क्रॉस करता है? बोट वाला लेके नहीं जाता है, तो एक डेड बॉडी को लकड़ी का बल्ला समझ करके वो क्रॉस करके चला जाता है, एक सांप को रस्सी समझ करके वो सांप पकड़ के चढ़ जाता है। हाँ, तो भ्रम, सांप को रस्सी समझना। और मैं सबसे बड़ा भ्रम इस जगत में ये है कि मैं आत्मा हूँ लेकिन मैं अपने आप को क्या मानता हूँ? मैं ये शरीर हूँ। अगर मैं आपसे आपका परिचय पूछूं तो आप लोग अपना परिचय क्या देंगे बताइए? कौन है आप? नाम बताएंगे, अपना सेक्स बताएंगे, अपना फैमिली लाइन बताएंगे, अपना देश बताएंगे, बट आर दो ऑल दोज थिंग्स आर वी देयर? मैं हूँ क्या? ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि हम लोगों की कितनी अज्ञानता है अपने बारे में, इसको कहते हैं भ्रम। और भ्रम जो है उसके बाद में विप्रलिप्सा। जब भ्रम के कारण हम कोई चीज को सही नहीं जान पाते हैं तो फिर प्रवंचना करते हैं, धोखा करते हैं, उसको विप्रलिप्सा कहते हैं। विप्रलिप्सा मतलब मैं जानता हूँ कि मैं ठीक से चीज़ नहीं जान रहा हूँ, लेकिन जैसे स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे लोगों से टीचर पूछता है कि ये सम अच्छी तरह से समझ में आ गया आपके, तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया रहता है। आर देयर एनी टीचर्स हियर? या यू मे बी नोइंग दिस बेटर, कुछ बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता रहे, लेकिन जब टीचर पूछती है कि इट्स ओके एवरीबडी अंडरस्टूड, तो सारे बच्चे बोलते हैं हाँ। क्यों बोलते सारे बच्चे हाँ? क्योंकि सोचते हैं कि अगर सब बोल रहे, सब लोग हाँ बोल रहे, मैं ना बोलूंगा कि मेरी समझ में नहीं आया तो लोग मुझे चिढ़ाएंगे, इसीलिए हाँ बोलते। दिस इज कॉल्ड प्रवंचना। ये खुद को धोखा देते हैं। उसी तरह से हम अपने आप को नहीं जानते हुए भी अपने आप को गलत बताना। जैसे एक बार नेहरू जो है एक पागलखाने में गए, और पागलखाने में जैसे वो प्रविष्ट हुए तो देखे कि वहाँ पे बहुत सारे पागल लोग हैं। उसमें से कुछ पागल लोग अपने गले में स्टेथोस्कोप डाल करके और बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, कुछ और अपने आप को बता रहा था, कुछ और अपने आप को बता रहा था। तो उसमें से एक ने पूछा नेहरू को कि हु आर यू, तुम कौन हो? नेहरू ने कहा कि मैं भारत देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो बोला पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था कि मैं भी भारत देश का प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन देखो मैं अभी कहाँ हूँ। हाँ, तो हम अपने आप को इस जगत में जो नहीं है वो मानना, वो क्या कहलाता है? पागलपन कहलाता है। सो इस पागलपन से हम केवल नॉलेज से निकल सकते हैं, उसको कहते हैं विप्रलिप्सा। हम जानते नहीं, हम अपने आप को गलत मान लिए, लेकिन गलत को सही सिद्ध करने के प्रयास में पूरा एनर्जी डाल देते हैं। That is called cheating tendency. You know that there was जैसे डार्विन का इतिहास हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। डार्विन ने लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज करके, वो बुक लिखा है आजकल जो कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ाया जाता है बच्चों को। उसमें बताया जाता है कि हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे। पर हमारे पूर्वज वास्तव में बंदर है? वहाँ पे आर्ग्यूमेंट में पूछते हैं कि कहा गया है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, एप से मैन हैज बिकम इवॉल्व्ड, है ना? लेकिन देयर इज नो लिंक ऑफ दैट सजेशन कि एप से मैन इवॉल्व हुआ है, उसका कोई सजेशन नहीं है। और वो फॉसाइल का उदाहरण देते हैं कि आज तक किसी भी साइंटिस्ट को ऐसा कोई फॉसाइल नहीं मिला जो ये बताए कि एप से मैन इवॉल्व होता हुआ दिखाई देता है। मैन भी है और एप भी है। तो एक साइंटिस्ट ने पिल्टडाउन, लंदन में एक गांव है पिल्टडाउन, एक शहर था, वहाँ पे एक साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहा था। उसको एक एप का जबड़ा मिला और एक आदमी का जबड़ा मिला। तो वो दोनों में लिंक क्रिएट करने के लिए क्या किया, एप के जबड़े को घस करके और आदमी की तरह से बनाने की कोशिश किया। दैट इज़ कॉल्ड पिल्टडाउन होक्स। इफ़ यू सर्च ऑन द इंटरनेट यू विल गेट इट, पिल्टडाउन होक्स। उस व्यक्ति ने क्या कोशिश किया, ये एप के जबड़े को घस करके और जो ये डार्विन का थ्योरी में बताया गया है कि मैन इवॉल्व फ्रॉम एप्स, उसको प्रूव करने की कोशिश किया, पर वो होक्स उसका पकड़ा गया। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नाउ पिल्टडाउन होक्स। ऐसे ही हमारे साइंटिस्ट लोग अनेक प्रकार से केवल फ्लावरी वर्ड्स डाल करके, अच्छे अच्छे शब्दों में घुमा करके, हाँ, और क्या करते हैं, जैसे कल एक शब्द आया था वो प्रेजेंटेशन में उसके, हाँ, कि उसको क्या बोला, रैंडम वेरिएशन। पर बहुत सारे सिंपल लोग समझ नहीं पाते कि व्हाट डस रैंडम वेरिएशन मींस। हाँ, तो दे एक्सेप्ट इट और रैंडम वेरिएशन। पर उसने पूछा रैंडम वेरिएशन है तो देयर हैज टू बी सम प्रूफ फॉर दैट रैंडम वेरिएशन, बट देयर इज नो प्रूफ फॉर दैट रैंडम वेरिएशन। हाँ, तो साइंटिस्ट लोग इस तरह से अपने बोल बचन को यूज करके, अपने शब्दों को यूज करके कॉमन जनता को गुमराह करते हैं साइंटिस्ट कम्युनिटी के नाम पे। दिस इज कॉल्ड विप्रलिप्सा। और ये सब विप्रलिप्सा वगैरह क्यों करते हैं हम लोग? प्रमाद के कारण, पागलपन के कारण। प्रमाद मतलब होता है पागलपन या मन की असावधानता। हमसे गलती क्यों होती है? क्योंकि हमारा मन असावधान रहता है। असावधानी ही मुख्य गलती का कारण है। देखो आप लोग रोड पे लिखा रहता है ना, सावधान है ना। सावधानी से अगर आप चलेंगे तो एक्सीडेंट से बचेंगे, लेकिन अगर व्यक्ति जैसे ही थोड़ा सा भी असावधान हो जाता है तो उसे गलतियां होना पॉसिबल है। और ये सारी चीज़ें असावधानी क्यों को होती है? क्यों? क्योंकि रूट कॉज इज आवर सेंसेस, जिसके ऊपर हम नॉलेज के लिए डिपेंड है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां अपूर्ण हैं। कैसे इंद्रियां अपूर्ण हैं? जस्ट सी इन दिस, 400 से 700 मिली माइक्रोन के दायरे के बाहर हम देख नहीं सकते हैं। आवर विजन इज लिमिटेड। सेकेंड चीज है, अगर आप मान लो किसी मिल्क के अंदर एक स्केल डाल दिया, ग्लास का बॉटल है उसके अंदर मिल्क भरा हुआ है और उसके अंदर आपने स्केल डाल दिया, तो मिल्क होने के कारण आर यू एबल टू सी दैट स्केल विच हैज गॉन इनसाइड? सो डज इट मीन दैट दैट स्केल डजंट एग्जिस्ट? इट मीन्स के स्केल है वहां पे। दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। पानी ले लीजिए ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी ले लीजिए और उसके अंदर आप पेंसिल या कोई लकड़ी का टुकड़ा डाल दीजिए एंड दैट इज स्ट्रेट, वो सीधा है। पर वो पानी में रिफ्रैक्शन के कारण जितना पोर्शन पानी में, वो कैसा दिखता है? वक्र दिखता है, टेढ़ा टावड़ा दिखता है ना। पर क्या वो वास्तव में टेढ़ा है? पर हमारी इंद्रिय हमको दिखा क्या रही है? सो आवर आईज आर लिमिटेड। लोग कहते हैं प्रमाण देने के लिए आंखों का विश्वास छोड़ करके भले आदमी का बात मान लो। हाँ, मतलब हमने प्रत्यक्ष देखा है। हिंदी में कहावत बोलते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या सुना होगा आप लोगों ने ये, है ना, कि जिसके हाथ में कंगन है उसको आईना दिखाने की जरूरत नहीं, उसको मालूम है कि हाथ में कंगन है। तो उसी तरह से जिसने प्रत्यक्ष देखा है उसको पता है कि रियलिटी क्या है। पर कभी कभी प्रत्यक्ष देखा हुआ कुछ और होता है। हमको लगता है कि हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं पर सच्चाई कहीं और होती है। क्यों? क्योंकि हमारी आँखें लिमिटेड हैं। उसी तरह से हमारे कान लिमिटेड हैं, भले कान बड़े बड़े हों। 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज़ के बाहर की फ्रिक्वेंसी हमको सुनाई नहीं देती है। हमसे ज़्यादा बेटर कुत्ता सुनता है, जानते हैं आप? उसको बोलते हैं डॉग विजल। हमसे ज़्यादा बेटर कुत्ता सुनता है। क्यों? क्योंकि कुत्ते को थोड़ा सा भी विजल, उसका फ्रिक्वेंसी जो है वो अलग है, हमारा सुनने का फ्रिक्वेंसी अलग है। हमारा कान कितना भी परफेक्ट है, लेकिन आजकल तो लोग अपने कान को वो कान के अंदर ये क्या बोलते हैं, दिन रात हेडफोन डाल करके ख़राब कर रहे हैं। हाँ, तो उनको बाद में धीरे धीरे वो कान में सुनना भी परेशानी हो जाएगी। जिसका कान परफेक्ट सुनता है उसका ये रेंज है। कभी कभी आप जाइए डॉक्टर के पास में तो डॉक्टर आपके कान में कुछ ये डाल के यहाँ भी ठोकता है, मालूम है आपको? यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क लगा करके ऐसे वाइब्रेट करता है और फिर आपको कहता है सुनो, सुनाई दे रहा है क्या? तो कभी कभी कान से फ्रिक्वेंसी न जाकर के यहाँ से भी जाकर के ईयर ड्रम को, वाइब्रेशंस जो है वो ईयर ड्रम को जाकर के क्या करता है। लेकिन हमारी अगर सुनने की लिमिटेशन है, ईयर ड्रम खराब हो गया है, तो हम हर चीज़ ठीक से नहीं सुन पाएंगे। जैसे कभी कभी देखो कुछ लोग बूढ़े हो जाते, सुनाई नहीं देता है। हमारे गाँव में एक जन थे, उनको बोलो समाचार तो बोलेंगे टमाटर, और टमाटर बोलो तो समाचार। हाँ, ऐसे ही परफेक्ट ब्लेंडिंग शब्द निकाल लेंगे, दूसरा कुछ बोलो कुछ और, उनको कुछ सुनाई और देता है। हाँ, सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ द ईयर्स। उसी तरह से हमारा जिह्वा जो है ये भी एक ज्ञान इंद्रिय है, लेकिन देखिए आप ये खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। शक्कर खाने के बाद में ऑरेंज खट्टा लगता है, ऑरेंज में खटास होती है नो डाउट, पर मीठा भी तो होती है। पर चूंकि आपने शक्कर खाया है इसलिए शक्कर को आप वो हमारी जीवा जो है वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, उसको रजिस्टर नहीं कर पा रही है। नींबू खाने के बाद में ऑरेंज मीठा लगता है। यू कैन डू इट प्रैक्टिकली, आपको पता चल जाएगा। और कहते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा ड्राई आइस, यू नो व्हाट इज ड्राई आइस? मोस्टली कहीं चीज़ लंबा दूर तक भेजना है और उसको हमेशा फ्रिज इन्वायरमेंट में भेजना है। एक्चुअली ड्राई आइस रूम टेम्परेचर है। ड्राई आइस जो है वो रूम टेम्परेचर, अभी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है, पर वो इतना ठंडा होता है कि उसको अगर आपने पकड़ लिया तो ठंडी से आपका चमड़ी तक जल जाएगा, चमड़ी बाहर निकाल देगा आपका, इतना ठंडा होता है वो। लेकिन उसका अगर टेम्परेचर आप थर्मामीटर से निकालेंगे तो वो रूम टेम्परेचर पर रहता है। उसी तरह से हाथ गर्म होने पर पानी छूना ठंडा लगता है और ठंडे पानी से हाथ छूने पर गर्म लगता है। दीज ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स यू कैन डू इट। क्यों ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे सेंसेस का लिमिटेशन है। नीचे वाले एग्जाम्पल में हमारा टच का सेंस का लिमिटेशन है, हमारा जिह्वा का लिमिटेशन है, हमारा हियरिंग का लिमिटेशन है और हमारे साइट का लिमिटेशन है। और इसके बेसिस पे हम सोचते हैं कि हमको परफेक्ट नॉलेज मिल जाएगा। दैट इज इम्पॉसिबल। उदाहरण देखिए, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, इट्स ए स्टिल फोटो, बट जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ब्लैक स्पॉट एंड देन टेल मी वॉट यू आर ऑब्जर्विंग। घूम रहा है ना, पर इज इट घूम रहा है? वो वास्तव में घूमता है, पर आपकी आंखें क्या दिखा रही हैं आपको? घूमता हुआ दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब हमारी आंखें क्या है? लिमिटेड है। हाँ, हमारी आंखें वो चीज नहीं दिखा रही जो हमको देखना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। इसमें देखिए आप, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसको दृष्टि भ्रम कहते हैं। ये इसमें फोटो में देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट ही सीज इन दिस फोटो? एक यंग लेडी है, देखो माता जी को ओल्ड लेडी दिखाई दे रही है। हाँ, दोनों है। अगर आपका देखने का रेफरेंस बदल गया तो वो ओल्ड दिखाई दे रही है, और देखने का थोड़ा सा रेफरेंस बदल गया तो आपको यंग लेडी दिखाई दे रही है। सो व्हाट आई एम एक्चुअली सीइंग? इसमें देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा फोटो में एक बट दिख रहा है ना, एक पुतला बनाया हुआ दिख रहा है ना, पत्थर का पुतला जैसा बनाया हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर उसको दूसरे एंगल से देखो तो एक एस्किमो दिखाई दे रहा है ना। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूजन। हमारी आंखें हमको क्या दिखाती हैं? देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हाट यू सी इन दिस। हाँ, एक ओल्ड मैन है और दूसरा There are three things in this. Old woman और man है ना। लेकिन old woman जहाँ पे, वहाँ पे एक आदमी जो है वो हाथ उठा करके बैठा हुआ दिख रहा है, अगर old को discard करेंगे तो। और जहाँ पे old man बैठा हुआ, वहाँ पे कोई गिटार बजाता हुआ बैठा हुआ है ना। अगर ये सबको discard करेंगे तो ये क्या दिखाई दे रहा है? Flower vase दिखाई दे रहा है, है ना। सो देर आर सो मेनी इल्यूजन्स इन टू दिस। लेकिन हमारी आंखें क्या दिखा रही हैं? जब तक हम ध्यान से सुन के उसको जानने की कोशिश नहीं करें तो हमको सब कुछ पकड़ पाना बड़ा इजी नहीं लगता है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूजन। यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, बूढ़े बाबा जब देख रहे हैं आप, तब क्या देख रहे हैं? कि वो कान में एक कुंडल पहना हुआ है, है ना। ये ओल्ड मैन है, राइट? दिस इज एन ओल्ड मैन हियर, और वो एक यंग लेडी जैसा दिख रही है। बट इफ यू लुक लाइक एन ओल्ड मैन, तो वो यंग लेडी का हाफ बॉडी जो है उसका ईयर लग रहा है, और उसका जो फ्रॉक एरिया है लेडी का, उसका इयरिंग लग रहा है। हाँ, यू कैन जस्ट सी दैट। और वहां पे क्या देख रहे हो? हॉर्स राइडर है, लेकिन उसमें और भी बहुत कुछ है। सो लाइक दैट देर आर सो मच इल्यूजन्स। सो इंद्रियों का ज्ञान क्या होता है? दिस प्रूव्स दैट हमारी इंद्रियां जो ज्ञान देती हैं वो क्या है? इम्परफेक्ट है। इसीलिए वी कैन नॉट डिपेंड 100% ऑन द इंद्रिया। सेंस परसेप्शन पे डिपेंड नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष ज्ञान। इसीलिए ये अपूर्ण है। इससे दूसरा जो है उसको अनुमान कहते हैं, उसको कहते हैं इन्फरेंस। इन्फरेंस किस पे आप डिपेंड करता है? अनुभव। हाँ, अनुभव किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वेशन। किस चीज का ऑब्जर्वेशन? एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार देखना। जैसे अगर आप इंडिया में देख रहे हैं कौवा काला दिखता है, लंदन में जाके देखा कौवा काला दिखता है, ऑस्ट्रेलिया में जाके देखा कौवा काला दिखता है, अमेरिका में जाके देखा कौवा काला दिखता है, स्टिल यू हैव नॉट गॉन टू ऑल द प्लेसेस ऑफ द प्लैनेट अर्थ, राइट? बट चार पांच जगह पे जाकर के कौवे को देखा, काला दिख रहा है, तो मेरा कंक्लूजन क्या हो जाता है? कौवा काला होता है। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कहीं पे कौवा सफेद भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। जैसे मोर को हम लोगों ने कौन से रूप में देखा है, मोर मल्टी कलर होता है इंडिया में, है ना, पर कहीं पर मोर वाइट भी होता है, और हम लोग कभी कभी वो वाइट मोर का पंख ला करके बलराम जी को मोर पंख उनके सिर पे लगाते हैं। तो कुछ कंट्रीज में मोर वाइट भी है, पर व्हाट वी ऑब्जर्व दैट इज वी इन्फर, उसको कहते हैं अनुमान। सो अनुमान भी अपूर्ण क्यों है, क्योंकि वो इंद्रियों पे डिपेंड है, पर मैक्सिमम पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है वो अनुमान के आधार पे किया जाता है। जब पुलिस को कोई कंप्लेंट लॉन्च किया जाता है तो फिर वो पुलिस जो है उस कंप्लेंट को लेकर के और उसको निहार स्टडी करता है, इसमें कॉमन थीम्स क्या है, फिर वो मैच करता है दूसरे अपराधियों से, और उसके बाद में वो इन्फर करता है कि ये घटना हो सकता है ये व्यक्ति ने किया होगा, बट इट इज नॉट परफेक्ट दैट यही व्यक्ति ने किया है क्या। बट ये अनुमान का जो ज्ञान है, इन्फरेंस का जो नॉलेज है, इट हेल्प्स अस इन इन्वेस्टिगेशन, एंड दिस इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ड ऑन बेसिकली आवर सेंस परसेप्शन। तो वो भी अपूर्ण है। जैसे आपको एक स्टोरी बताऊं, हमारे एक सुदर्शन प्रभु हैं बेलगांव में, तो वो एक अपना अनुभव बता रहे थे कि बेलगांव में एक बार ऐसा हुआ, एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था, और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पे उसका जो साइट था, कंस्ट्रक्शन साइट था, वहाँ पे एक ओल्ड मैन को उसने वॉचमैन करके सिक्योरिटी रखा हुआ था, तो एक दिन उसके जो कंस्ट्रक्शन साइट से बहुत सारा मटेरियल जो है वो चोरी होकर के चला गया, कुछ वैल्यूएबल। तो उसने इसको सिक्योरिटी को बुला करके पूछा कि मेरा मटेरियल चोरी हो गया, क्या हुआ। वो बोला, साहब मैं तो ध्यान तो रखा था लेकिन मैं जान नहीं पाया कि क्या हुआ। तो उसके बाद में पुलिस कंप्लेंट लॉन्च किया गया, पुलिस वाले आए, पुलिस वाले अपना डॉग लेके आए, कुत्ता आया, और कुत्ता को वो उस जगह पे लेके गए, और कुत्ता को उस जगह पे ले जाने के बाद में फिर कुत्ता को वहाँ पे कुछ स्निफ करवाया, सूंघाया, और फिर कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ता वहाँ पे सूंघ करके और वो सिक्योरिटी के घर पे गया, सूंघते सूंघते वो सिक्योरिटी के पास गया, तो पुलिस को लगा ये सिक्योरिटी इज़ द कल्प्रिट, उसको ले जा करके लॉकअप में डाल दिया, उसकी खूब पिटाई करने लगे। और वो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कहता है कि ये इसको मैं बहुत सालों से नौकरी पे रखा हूँ, इसको जानता हूँ, ही इज़ नॉट द रियल कल्प्रिट, तो आप लोग इसको मारो नहीं। पर उन्होंने कहा, नहीं, कुत्ते ने बताया है इसके घर के पास सूंघ करके गया था, तो ही इज़ द कल्प्रिट, और जब तक इसको मारेंगे नहीं तब तक ये सच्चाई उगलेगा नहीं, तो सच्चाई उगलने के लिए इसको पिटना पड़ेगा, पर उसको अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, सो इस तरह से उसको बहुत जब मारे तो वो आदमी जो है वो हाँ हाँ करने लगा, और उन लोगों ने अपना केस बना लिया कि देखा फाइनली इसने ही बनाया है। पर बाद में और इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता चला कि वो कुत्ता जो है जब उसको स्निफ करने के लिए लेके गए थे तो वो कुत्ता वहाँ पे एक हड्डी पा गया और वो हड्डी को स्निफ कर रहा था, और हड्डी सूंघता हुआ वो उस वॉचमैन के घर पर चला गया, क्योंकि उस दिन वो वॉचमैन ने वही हड्डी को कुकिंग करके खाया हुआ था, और वो हड्डी उठा करके उसी जगह पे फेंक करके आया हुआ था जहाँ पे कुत्ते को सूंघने के लिए लेके गए। तो हमारा नॉलेज किसके ऊपर डिपेंड था, कुत्ते के ऊपर, पर कुत्ता सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है ये हमको पता नहीं है, पर हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि कुत्ता हमेशा सही बताया है। अब पता नहीं कुत्ते ने सही बताया, हमने सही कंस्टिट्यूट कर लिया है, और वो व्यक्ति को ये कुत्ते के जस्ट, कुत्ता तो हड्डी ढूंढ रहा है पर इसको पुलिस की मार खानी पड़ी किसके कारण, कुत्ते के नॉलेज के कारण। सो अनुमान जो है, यद्यपि उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो सकता है, पर इट इज़ आल्सो इम्परफेक्ट, इट कैन नॉट लीड ऑलवेज टू द परफेक्ट नॉलेज, इसीलिए अनुमान भी जो है वो क्या है, अपूर्ण है। जैसे ये एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यू नो दिस एग्जाम्पल वेरी वेल, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन टू यू, है ना। चार अंधों को ला करके और हाथी को विभिन्न अंगों को टच करवाते हैं और उससे बताओ कि हाथी क्या है, तो जो हाथी का कान टच करता है वो क्या कहता है, हाथी एक फैन है। जो हाथी का पैर टच करता है वो कहता है कि हाथी पेड़ का ट्रंक है। हाथी का जो क्या कहते हैं उसका दांत टच करता है वो कहता है वो सांप है। हाथी का जो सूंड ट्रंक टच करता है उस सॉरी हाथी का सूंड टच करने वाले को सांप लगता है, और उसका ट्रंक को टच करने वाले को लगता है कि ये दांत को टच करने वाले को लगता है कि एरो है। इस तरह से हाथी के बारे में उन लोगों के अलग एक प्रकार की नॉलेज आ रहा है, पर उनमें से किसी का भी नॉलेज करेक्ट है? उनमें से किसी का भी नॉलेज करेक्ट है? तो इन्फरेंस इज लाइक ब्लाइंड मैन इन्फरिंग समथिंग, ये भी क्या है? अपूर्ण है, अनुमान अपूर्ण है। उसके बाद में तीसरा जो ज्ञान है दैट इज कॉल्ड परफेक्ट नॉलेज, और उसको कहते हैं शब्द प्रमाण या शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान यानी कहाँ से प्राप्त होता है? अधिकृत शास्त्र अनुमोदित स्रोत से श्रवण करना। अधिकृत इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अधिकृत मीन्स बोनाफाइड, बोनाफाइड सोर्सेस से नॉलेज को प्राप्त करना। और बोनाफाइड सोर्स क्या है? शास्त्र है। शास्त्र क्यों बोनाफाइड है? क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है। और शास्त्रों को हम अगर प्राप्त करने की कोशिश करें तो शास्त्र जो है वो अवरोही ज्ञान है, इट कम्स फ्रॉम अप टू डाउन, जैसे गुरु के द्वारा शिष्य को मिलता है ना। सो इट डिसेंड्स, दैट नॉलेज डिसेंड्स। जैसे एक आम आपको दे दिया गया और कहा गया कि ये आम ले जा करके आप अमुक व्यक्ति को दे दीजिए, आप आम को एज इट इज ले जा करके दे देते हैं तो वही आम पहुंच गया है ना, चाहे बीच में कितना भी लिंक हो। आप लोगों ने चाइनीज विस्पर का गेम खेला होगा है ना, चाइनीज विस्पर में क्या होता है? क्या होता है बताइए? एक व्यक्ति किसी के कान में कुछ शब्द कहता है, वो दूसरे को कहता है, वो तीसरे को कहता है, वो चौथे को कहता है, ऐसे पूरा उनका जो सीरीज होता है। और जब पहले आदमी ने जिसने ज्ञान को इवॉल्व किया था उसके पास जब आ जाता है तो उसमें से कुछ और ही रहता है ना। क्यों? क्योंकि एवरी स्टेप पे उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह से बिजली कम करते चला जाता है, कुछ शब्द बताने वाला क्या करता है? खा जाता है। तो जो भी उसको दिया गया वो क्या करता है? भगवान इसीलिए अर्जुन से कहते हैं कि ये ज्ञान यद्यपि मैंने करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्यदेव विवश्वान को दिया था, लेकिन सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप, क्योंकि ये ज्ञान कालांतर में अनेक प्रकार के लोगों द्वारा प्रवाहित होते होते कहीं बीच में ऐसे लोग भी आए जिन लोगों ने वो ज्ञान को क्या किया? नष्ट किया। कैसे नष्ट किया? अपनी मन मति जो है उसमें घुमा करके। जैसे भगवद गीता तो है भगवान ने दिया है, पर भगवद गीता के आजकल मार्केट में आप जाओगे तो 700 एडिशंस आर अवेलेबल। एंड व्हेन प्रभुपाद स्टार्टेड टू राइट भगवद गीता ही स्टार्टेड थिंकिंग कि मार्केट में ऑलरेडी 700 एडिशंस है और एक एडिशन लिखने की मुझे क्या जरूरत है ना। 700 एडिशंस होने के बावजूद भी मेंटालिटी ऑफ पीपल वेयर नॉट चेंजिंग। आई विल वाउच फॉर माई सेल्फ, मैं IIT लाइब्रेरी में एक भगवद गीता उठा करके और बड़े चाव से उसको पढ़ा, और वो भगवद गीता पढ़ने के बाद में मेरा मन जो है वो रिवेलियस हो गया। आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट इज कृष्णा हिमसेल्फ ही थिंक्स, व्हाई इज टेलिंग एवरीबॉडी टू सरेंडर टू हिम। वो अपने आप के सबको समर्पित होने के लिए क्यों बोलता है? क्योंकि द ऑथर हैज नॉट गिवन ए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन Why he is calling everyone to surrender to him? मत यत करोसी यदस्नासी यत जोहोसी ददासी यत। आपको अगर कोई व्यक्ति आकर के ऐसे पूछे तो आप प्रश्न करेंगे, भाई तुमको सब कुछ क्यों सरेंडर करूं? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? है ना? तो कृष्ण को मैं सोचा कि हो सकता है कोई राजा रहा होगा, महाराजा रहा होगा, किसी बड़े वंश में आया होगा, बड़ा पावरफुल रहा होगा, लेकिन मैं हर व्यक्ति को क्यों सरेंडर करूं? तो माई माइंड बिकेम रिबेलियस बिकॉज दैट ऑथर हैज नॉट गिवन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। लेकिन जब भगवद गीता एज इट इज श्रील प्रभुपाद के द्वारा पढ़ा तब मुझे पता चला कि कृष्ण को सरेंडर करने में कृष्ण का फायदा है या मेरा फायदा है। जब मेरा फायदा जहां होगा वो फायदा हम लेंगे, इसीलिए इंटरप्रिटेशन मैटर्स, इंटरप्रिटेशन मैटर्स। इसके लिए इंटरप्रिटेशन किसके द्वारा सुनना चाहिए? जो प्रॉपर है। जैसे अगर आप जानना चाहें कि आपका पिता कौन है, हु इज द परफेक्ट सोर्स टू टेल यू हु इज योर फादर, कैन यू आस्क योर पड़ोसी, अपने कलीग को पूछोगे हु इज माई फादर, हाँ किसको पूछोगे? दुकान वाले को, मकान वाले को, किसको पूछोगे? एंड हु कैन गिव यू द परफेक्ट नॉलेज, हु इज योर फादर, हु कैन गिव द परफेक्ट नॉलेज? हाँ ओनली मदर, बिकॉज सी नोज दैट हु गेव मी द सीड, है ना। एंड जिस सीड से इस बच्चे को बिगट किया है, हु गेव मी दैट सीड? ओनली मदर नोज। देर इज अनदर फॉर्मुलेशन ऑल्सो बाय दैट वी कैन नो. माता का कहना मान लिया सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. अगर माता का कहना नहीं मानेंगे तो दिस इज देयर. हम तुम्हारे जीन्स का परीक्षण करके भी, साइंटिस्ट लोग बताते हैं, हाँ हम तुम्हारे जीन्स का परीक्षण करके बताएंगे कि तुम्हारे पिता कौन है, केवल 800 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा. हम कितना साल जिएंगे? डीएनए सैंपल परीक्षण से भी पिता की पहचान की जा सकती है, परंतु विश्व के लगभग 25 करोड़ वयस्क पुरुषों में से केवल 10% लोगों का जीन परीक्षण औसतन 10 सेकंड प्रति व्यक्ति की दर से करने पर भी इतने लोगों का परीक्षण करने में 800 वर्ष लगेंगे. दिस इज ओनली 25 करोड़ एडल्ट. उस दिन हमने एक जन को पूछा था कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है, तो ही सेड 650 करोड़. आउट ऑफ 650 करोड़ इफ यू जस्ट रिमूव द चिल्ड्रेन एंड ओल्ड पीपल, स्टिल हाउ मच विल बी द एडल्ट पीपल? दिस इज ओनली फॉर 25 करोड़ पीपल. 800 वर्ष लगेगा. अगर 100 करोड़ भी होते हैं तो कितना साल वेट करना पड़ेगा? और ये सब करने के बाद में भी हमारा माइंड जो है वो शांत नहीं रहेगा. देर मे बी समबडी हुज जीन आई हैव नॉट टेस्टेड, है ना? और ये भी इम्पॉसिबल है कि 10 सेकेंड में किसी व्यक्ति का जीन्स का परीक्षण किया जा सकता है. इंस्ट्रूमेंट ही फिट करने में बहुत समय चला जाएगा. उसका सैंपल लेना, डीएनए सैंपल लेना, उसका जीन्स का परीक्षण करने के लिए बहुत सारा समय चला जाएगा. सो इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल. सो सिंपलेस्ट क्या है, उसी तरह से भगवान कौन है वो जानने का है तो शास्त्र को क्या कहते हैं? शास्त्र जो है हमारी माँ है, भगवान हमारे पिता हैं. तो भगवान के बारे में जानकारी कौन देता है? शास्त्र देता है. हम लोग शास्त्र को छोड़ करके किसी अन्य सोर्स से पूछते रहते हैं कि भगवान कौन है, तो जो नहीं जानेगा क्या बताएगा? जो जितना जानेगा उतना ही बताएगा. सो वी हैव टू बी वेरी श्योर टू अंडरस्टैंड दिस. भौतिक दुखों से चिरंतन मुक्ति कैसे प्राप्त करें, दुखों के सागर से कैसे निकलें, इस भौतिक जगत के स्वभाव और उद्देश्य को कैसे जानें, परमेश्वर परम नियंता और परम भोक्ता कौन है कैसे जानें, हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है ये सब कैसे जानें, ये सब जानने के लिए हमको वेदों का आश्रय लेना पड़ेगा. वेद हमें सब कुछ बताएंगे, जैसे माँ बताती है कि पिता कौन है. तो शास्त्र वैध है, उसकी वैधता का प्रमाण क्या है? इट्स बोनाफाइड. क्यों? शास्त्र जो है वो सर्वव्यापी ज्ञान देता है. शास्त्र में जितने भी ज्ञान दिए गए हैं वो ज्ञान कभी भी अल्टर नहीं होता है. लेकिन साइंस में जितने भी थेरी प्रोपाउंड किए गए हैं अब तक, जितने भी थेरी साइंस ने बनाए हैं, हर थेरी में चेंजेस है. यू नो देर इज़ अ थेरी कॉल्ड हबल्स कॉन्स्टेंट. देर वॉज अ साइंटिस्ट बाई नेम हबल. ही हैज़ गिवन सम कैलकुलेशन फार्मूला और उसमें उसने एक नंबर को कॉन्स्टेंट नंबर रखा. जो लोग स्कूल में पढ़ते कॉलेज में पढ़ते थे दे मे बी नोइंग, पर वो कांस्टेंट नंबर इतना बार चेंज हो चुका कि उसको कांस्टेंट से बदल करके उसको हबल्स वेरिएबल्स बोलने लगे. पर शास्त्र में कभी ऐसा चीजें चेंज नहीं आया है. अपरिवर्तनीय है शास्त्र, हर व्यक्ति या वस्तु के लिए लागू है, प्रत्येक क्षण अथवा समय की सीमाओं में भी लागू है. टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस हर परिस्थिति या परिवेश में लागू होता है. शास्त्रों की वैधता का प्रमाण शास्त्रों में ही दिया गया है. गोबर के बारे में अब साइंस कहता है कि गोबर के अंदर एंटीसेप्टिक क्वालिटीज होते हैं, राइट? गोबर जो है गाय का गोबर और बाकी मनुष्य का गोबर है, दूसरे भी प्राणियों का गोबर है, पर गाय के गोबर में प्यूरिफाइंग सब्सटेंस होता है, बाकी लोगों के गोबर में प्यूरिफाइंग सेंटेंस नहीं होता है. अगर आपको कोई चीज़ पवित्र करना पड़ता है, जब हम अपना गोबर पास करके आते हैं तो वी टेक बाथ टू बिकम प्यूरिफाइड, राइट? लेकिन जहाँ पूजा करना होता है, भूमि को पवित्र करना होता है, तो गोबर बाहर लाते हैं गाय का और उसको ला करके लिपते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये प्योरीफाइड हो जाएगा. हु टोल्ड दैट दिस गोबर इज एंटीसेप्टिक? गांव में घर बनाते थे गोबर के, पता है आप लोग को? छत पे गोबर लगाते, दीवालों में गोबर लगाते. क्यों? क्यों? क्योंकि इट डिस्ट्रैक्ट्स अल्ट्रावायलेट रेज. अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है उसको वो क्या करता है, सॉरी नॉट डिस्ट्रैक्ट्स, इट एब्जॉर्ब्स, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रे जो है वो घर के अंदर घुसे हुए व्यक्ति को कष्ट नहीं देगा. गर्मियों के समय में ज्यादा सा जब सूरज बहुत नजदीक होता है उस समय अल्ट्रावायलेट रेस, इसीलिए कोई व्यक्ति अगर ज्यादा धूप में घूमता है तो उसको कैंसर वगैरह होने का संभावना बढ़ जाता है. लेकिन गोबर मट्टी एक साथ मिला करके लगा दिए तो गोबर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे डिफेक्ट नहीं होता है। पर अगर ये सीमेंट है, सीमेंट का घर बनाएंगे आप, तो सीमेंट के घर में रहने से आपके घर में गर्मी बढ़ जाती है देखो, पर गोबर के घर में रहने से, पत्थर के घर में रहने से गर्मी नहीं बढ़ती है। क्यों? उसके भी बहुत सारे गुण हैं, कारण हैं। हाँ, सो दिस इज मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर क्लियरली एंड इट नेवर चेंजेस, आज भी वही प्रॉपर्टी है। भूगोल है, हम लोग पहले, हमारे साइंटिस्ट बोलते थे कि भू क्या है, धरती कैसी है, अंडे के जैसी है, इलिप्टिकल है ना, पर ये भू पृथ्वी गोल है, हमारा शास्त्र जो है बहुत पहले से बता रहा था। जब वास्को डिगामा पूरा पृथ्वी को घूम करके आया तब उसने बताया कि पृथ्वी गोल है, तब से रियलाइज हुआ कि पृथ्वी गोल है ना। पौधों में जान होती है ये भी हम नहीं जानते थे जब तक कि आर्कमिडीज ने हमको बताया नहीं। आर्कमिडीज ने एक सिद्धांत, उसको बोलते हैं आर्कमिडीज का सिद्धांत है। आर्कमिडीज ने बताया कि पौधों में जान होती क्यों, क्योंकि ही ऑब्जर्व ग्रोथ इन द प्लांट्स। अनदर थिंग ही ऑब्जर्व, जैसे हमको म्यूजिक अच्छा लगता है ऐसे पौधों को भी म्यूजिक अच्छा लगता है। आप जानते हैं यहाँ अंडमान एंड निकोबार द्वीप में एक मुस्लिम है, वो उनका नर्सरी है बहुत बड़ी, ही इज गॉट सो मच अवार्ड्स ऑल्सो। तो उनके नर्सरी में उन्होंने एक प्रयोग किया, उन्होंने क्या प्रयोग किया, उन्होंने अपने एक एकड़ ज़मीन में कुछ फसल लगाई और दूसरे एकड़ ज़मीन में कुछ फसल लगाई, और फिर एक एकड़ ज़मीन में उसने कुछ लोगों को पैसे दे करके कहा कि इस ज़मीन में आप आकर के यज्ञ करो, भगवान का नाम कीर्तन करो, सब कुछ करो, और दूसरा जो ज़मीन था उसमें उन्होंने पैसा दिया लोगों को, बोला यहाँ पे आकर के बूजिंग स्मोकिंग जो भी करना है, ऑल नॉनसेंस एक्टिविटी यू परफॉर्म इन दिस। हाँ, और उसके बाद में क्रॉप्स जो देखा तो जिस सब जहाँ पे यज्ञ हो रहा था, यज्ञ का धुआं निकल रहा था, भगवान का नाम का कीर्तन किया जा रहा था, उसमें अबेंडेंस अमाउंट में जितना उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज़्यादा अनाज पैदा हुआ। लेकिन जहाँ पे ये ऑल नॉनसेंस एक्टिविटीज़ किया जा रहा था उसमें उसको अपेक्षा से भी बहुत कम अनाज मिला। तो इवन प्लांट्स कैन रिकॉग्नाइज दिस काइंड ऑफ थिंग। जानते हैं प्लांट जो खिड़की पर लगा दो और एक तरफ उसको गाना सुनाओ और एक तरफ उसको भजन सुनाओ, यू विल फाइंड वो किस तरफ बेंड होता है। तो दैट मीन्स इट्स ए लिविंग एंटिटी, वो जीव है और उसको बढ़ने के, लेकिन वो प्लांट के शरीर में है। तो दिस वी केम टू अंडरस्टैंड ओनली टिल। ऐसे ही बहुत सारे लोग मांस भक्षण इसलिए करते हैं, उनको लगता है कि जानवरों में आत्मा नहीं होती, केवल मनुष्यों में आत्मा होती है। जानवर दौड़ता है, उठता बैठता घूमता फिरता सब कुछ करता है, फिर भी वो लोग अपना जीवा शांत करने के लिए क्या सिद्धांत देते हैं, उनको भगवान ने हमको खाने के लिए बनाया है, उसमें जान नहीं होती है, जान केवल मनुष्यों में होती है, इसलिए मनुष्य का मर्डर किया तो तुमको इम्प्लीकेशन होगा, लीगल इम्प्लीकेशन। पशुओं का मर्डर किया तो लीगल इम्प्लीकेशन नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हमारा यही देवनार में कितना चल रहा है, पूरे भारत में कितना गो हत्या चल रही है, कितने सारे पशुओं को मारा जा रहा है, क्या उनको मर्डर के केस में इम्प्लीकेट किया जा रहा है? तो नॉट इवन आवर गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज दैट, नॉट इवन आवर गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज, बट कृष्णास गवर्नमेंट विल रिकॉग्नाइज दैट, कृष्णास गवर्नमेंट विल रिकॉग्नाइज दैट, एंड कृष्णास गवर्नमेंट विल वॉच ऑल योर एक्टिविटीज, एंड देयर आर 12 विटनेस वॉचिंग आवर एक्टिविटीज एवरी मोमेंट। वी कैन नॉट स्किप बाय टेलिंग लाइज कि हमने ऐसा नहीं किया। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। सो पौधों में जान होती है, शास्त्र पहले से ही बताया था। भ्रूण का विज्ञान, भ्रूण यानी जो गर्भ के अंदर जो शिशु होता है उसमें पहले दिन से लेकर के उसके पैदा होने तक वो क्या क्या करता है, पूरा एक्टिविटी शास्त्रों में बताया गया है। आवर मेडिकल साइंस हैज नो नॉलेज अबाउट दिस। वो अभी तक मैक्सिमम वो लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि उनका इंस्ट्रूमेंट से देख करके कि ये अभी बच्चा जो है ये लड़की है या लड़का है, पर वो क्या सोचता है क्या करता है उसका कोई नॉलेज नहीं है। पर शास्त्र में बताते हैं कि 6 महीने का होने के बाद में शिशु को उसके 100 जन्मों का, पूर्व 100 जन्मों का उसको रिमेम्बरेंस आता है गर्भ के अंदर ही। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैंने इतने पाप किए जिसके कारण मैं इस गर्भ में आ गया हूँ, कृपया करके मुझे यहाँ से निकालिए, इसके बाद में मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा पूरी तरह से। लेकिन माया इतनी प्रबल है कि जब वो बाहर निकलता है फिर से भूल जाता है। तो डे टू डे का नॉलेज दिया गया है कि फर्स्ट डे वो एक पानी के बुलबुले के अंदर रहता है, 5वें दिन में वो एक मटर के दाने के जैसा बनता है, ऐसे 9 महीने में उसको अपना पूरा शरीर बनाता है वो, और फिर वो शरीर को लेकर के भगवान से प्रार्थना करके बाहर आता है। सो उसके अंदर नॉलेज, वो भ्रूण का विज्ञान शास्त्रों में बहुत पहले से दिया गया है, वो एज इट इज है, अभी तक बदला नहीं है। साइंटिस्ट लोग अभी, डॉक्टर्स लोग अभी इसको धीरे धीरे रियलाइज करना आरंभ किए हैं। शास्त्रों में आश्चर्यजनक भविष्यवाणियां हैं, भगवान कल्कि के जन्म की भविष्यवाणी है। अफकोर्स कुछ लोग मूर्ख बनाते हैं, साउथ इंडिया में कोई क्लेम करता है कि मैं भगवान कल्कि हूँ, पर शास्त्र कहता है भगवान कल्कि का जन्म कब होगा, कलयुग के अंत में। कलयुग के आरंभ में भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, कलयुग के अंत में भगवान जो है कल्कि के रूप में प्रकट होंगे, और कल्कि के रूप में कहाँ प्रकट होंगे वो सब कुछ बताया है। बिहार में संभलपुर नामक एक प्लेस है, वहाँ पे उनके माता पिता का भी नाम दिया है कि इनके घर में भगवान पैदा होंगे, और भगवान पैदा होंगे तो करेंगे क्या, उनके लक्षण क्या क्या होंगे, गुण क्या होंगे, एवरीथिंग इज मेंशन। कृष्ण जब प्रकट हुए तो उनके लक्षण गुण मेंशन है शास्त्र में, चैतन्य महाप्रभु के लक्षण गुण शास्त्रों में मेंशन है। इसी तरह से भगवान जब जब भी अवतार लेते हैं उनके कार्य, उनके लक्षण, उनके गुण सब कुछ मेंशन्ड है। हा? तो ये बताया गया है कि आज से 4,27,000 वर्ष के बाद जब कलयुग का अंत होगा, उस समय भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे, घोड़े की सवारी करेंगे, हाथ में तलवार लेंगे, और उस तलवार से प्रत्येक व्यक्ति को काट करके और भगवत धाम में वापस लेकर के जाएंगे, नहीं तो दूसरे युग में, क्योंकि कलयुग के बाद में सतयुग जो है उसका रिपीटेशन होगा। तो भगवान जो है अपने तलवार से काट के लोगों को उस युग में जाने की शक्ति प्रदान करेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी है, गौतम बुद्ध कब प्रकट हुए थे, गौतम बुद्ध, देयर आर टू बुद्धास यू नो, द ओरिजिनल बुद्धा इज गौतम बुद्धा हु अपियर्ड इन दिस प्लैनेट अर्थ 3700 BC बिफोर, एंड ही इज विष्णु इनकार्नेटेड एज गौतम बुद्ध। There is another Buddha called Sakya Singh Buddha. And this Sakya Singh Buddha, he appeared into Limbuni called in the Nepal. This original Buddha appeared in Bodh Gaya called Kapilvastu. उस जगह पे, ये border state है। तो ये 1000 वर्ष बाद में ये दूसरा Buddha पैदा हुआ था, जिसका नाम था Sakya Singh Buddha. And this Sakya Singh Buddha, he is the person who has propounded the theory of क्या कहते हैं इसको, अहिंसा। सॉरी, भगवान ओरिजिनल जो बुद्धा थे उन्होंने अहिंसा का थेरी प्रोपाउंड किया, एंड दिस बुद्धा हैज प्रोपाउंडेड द थेरी ऑफ वॉइडिज्म, यानी शून्यवाद, भगवान के बारे में शून्य का, भगवान कुछ नहीं है, निराकार है। दिस अनदर ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। तो भगवान के बारे में पूरा मेंशनड है, उनका मिशन क्या होगा वो मेंशनड है, सब कुछ शास्त्रों में दिया गया है, एंड दैट हैज नॉट चेंज दैट। सो पर्सन हैज टू नो द रियलिटी टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। चैतन्य महाप्रभु के बारे में, अवतार के बारे में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे तो क्या क्या करेंगे। देर इज अ लॉट ऑफ प्रूफ, अबाउट हंड्रेड्स ऑफ प्रूफ्स गिवन इन द स्क्रिप्चर अबाउट चैतन्य महाप्रभु, कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ प्रकट होंगे, उनके शरीर का रंग कैसा होगा, क्या करेंगे, कितने साल तक यहाँ पे लीला करेंगे, उसके बाद में और क्या क्या करेंगे, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द शास्त्र, एंड दिस हैज नेवर चेंज्ड। जिन लोगों ने शास्त्र को पढ़ा है, भगवान के इन लीलाओं को पढ़ा है, दे कैन जस्टिफाई दैट यस, वॉट एवर इज मेंशन्ड इन द शास्त्र विच हैज अपियर्ड मे मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर फ्रॉम कृष्णा होल्ड्स ट्रू इवन टूडे। शास्त्रों की तुलना जो है पंखों से की जाती है, क्यों, क्योंकि जैसे पंख जो है उस बर्ड को एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक लेके जाता है, उसी तरह से शास्त्र हमको ज्ञान दे करके हमारी चेतना को भौतिक चेतना से उड़ा करके आध्यात्मिक चेतना में लेके जाता है, जहाँ हमारा सफलता प्राप्त होती है। और शास्त्र की तुलना जो है तालाब से की गई है, शास्त्रों में वो सारे नॉलेज दिए गए हैं जिस नॉलेज की हमको आवश्यकता होती है। शास्त्रों की तुलना माँ से की गई है, शास्त्रों की तुलना डिक्शनरी से की गई है, निर्देशिका से, शास्त्रों की तुलना जो है डायरेक्टरी से की गई है, यू लुक फॉर द इन द डायरेक्टरी फॉर द एड्रेसेस एट्सेट्रा ना, उसी तरह से शास्त्र में, शास्त्र को कहा गया निगम कल्प तरु, निगम कल्प तरु माने कल्प तरु का मतलब होता है वो चीज़ जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, तो शास्त्र आपको वो ज्ञान देता है। इसीलिए शास्त्र में हमको विश्वास होना बहुत आवश्यक है। भागवत में मेंशन्ड है कि शास्त्र में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज है, संगीत, नृत्य, कला, कौशल, आरोग्य विज्ञान, साइकोलॉजी, खगोल शास्त्र, फिलॉसफी, भाषा विज्ञान, आचार संहिता, अभियंत्रिकी, विमान शास्त्र, धनुर्विज्ञान, गणित, इतिहास, कॉस्मोलॉजी, नीति विज्ञान, राजनीति, समाज शास्त्र। कॉस्मोलॉजी के ऊपर तो मेरे पास में वीडियो भी है, पर मैं आज दिखाऊंगा नहीं आपको कि ये पूरे विश्व का किस तरह से निर्माण किया गया है, कहाँ पे क्या है, एंड हु कंट्रोल्स दिस, हाउ इट हैंग्स अराउंड, हाँ, इंटायर हमारा जो इस्कॉन का मायापुर प्रोजेक्ट आ रहा है, उस मायापुर प्रोजेक्ट में वैदिक प्लैनेटोरियम बनाने वाले हैं, उस प्लैनेटोरियम में कॉस्मोलॉजी जो है उसको ऐसे विजुअल दिखाएंगे जिससे कि आप कॉस्मोलॉजी को बड़े आसानी से समझ सको। अगर आपको समय मिले मंदिर पूरा होने के बाद में कभी वहाँ पर विजिट करके वो देख सकते हैं। आपका नेहरू प्लैनेटोरियम में है, बट दिस डजंट गिव यू सो मच नॉलेज बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर, वो साइंटिस्ट लोग क्या बताए हैं उसके आधार पे है, लेकिन यहाँ पे जो बनाया जा रहा है दिस इज बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर, शास्त्र के अनुसार। सो आप कहेंगे कि शास्त्र इतने हैं तो फिर भिन्न प्रकार के शास्त्र क्यों हैं? भिन्न प्रकार के शास्त्र विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए होते हैं और वस्तु तथा स्थिति, काल और स्थान के अनुसार प्रकाशित होते हैं, लेकिन सार एक ही रहता है। हाँ, कहीं पॉकेट डिक्शनरी होता है, कहीं बृहत डिक्शनरी होता है, उसी तरह से वैदिक नॉलेज जो है ये आप देख सकते हैं, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, कैसे कैसे कितना पूरा डिवाइडेड किया गया है। इफ़ आई गो ऑन एक्सप्लेनिंग दिस टू यू इट विल टेक अनदर 2 hours, सो यू कैन जस्ट सी दिस, मे बी सम अदर टाइम्स इफ यू फाइंड टाइम वी कैन डिस्कस अबाउट दिस। ये कंक्लूजन है, वेद निर्देशित तौर तरीका को अपने जीवन में अपनाने का वैयक्तिक अनुभव किसी को है? अगर आप कहेंगे कि आप वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में इतना बात कर रहे हैं, तो किसी का ऐसा अनुभव है क्या? यस, किस प्रकार का अनुभव है? उनका अनुभव है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य से मुक्ति। आपके सामने एक प्रभु जी हैं, पूछो इनको डिवोशनल लाइफ में आके कितना समय हुआ और उनके जीवन में कितना चेंजेस आए। There is another person here. You ask her, she will give her testimony that after accepting spirituality, how many changes has occurred into her life. There are many people sitting here. They can vouch for this. If you will also adopt it properly, to aapke bhi jeevan mein parivartan aayega, and it's not very late that you will also be able to vouch for this. Aap bhi yahi batayenge. So, kaam, krodh, lobh, moh, mad, matsarya, isse mukti prapt karenge aap. अधिकृत प्रमाण क्या है? भगवान गीता में कहते हैं, भीतराग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रित भावो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव आगता। अर्जुन से भगवान कहते हैं, अर्जुन ये मत सोचो कि दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू दिस नॉलेज हैज बीन गिवेन लॉन्ग वे बैक, एंड बाय यूजिंग दिस नॉलेज, इस ज्ञान को यूज कर करके इस जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन सफल किया है। यू आर ऑल्सो वन ऑफ दैट। If you will also accept this, तो तुम्हारा भी जीवन तुम सफल कर सकते हो। उसी तरह से हम में से भी कोई भी अगर इस ज्ञान को स्वीकार करेगा तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति भी अपना जीवन सफल करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस तरह वेदों का अनुसरण कर बहुत सारे संत पुरुषों ने अपने जीवन के लक्ष्य जो कृष्ण प्रेम है उसको प्राप्त कर लिया है। अनुभव से हम ये समझ पाएंगे कि शास्त्र ही हमारे जीवन के, हमारे उन्नति पथ के असली मार्गदर्शक और जीवन साथी हैं। हम लोग जीवन साथी किसको मानते हैं, पर वो जीवन साथी कहीं ना कहीं हमारा हाथ छोड़ देता है, पर ये शास्त्र जो है, जो नॉलेज देता है, ये कभी साथ नहीं छोड़ता है। जब हम समर्पित भाव से नियमित अध्ययन करेंगे तो हम बड़े धैर्य और प्रेम से एक दूसरे के साथ अपने अनुभव का आदान प्रदान कर सकेंगे। आदर भाव से शास्त्रों का अध्ययन करने से हम पाएंगे कि शास्त्र बहुत ही गहरे ज्ञानवर्धक, प्रकाशक और पोषक है। नित्य समर्पित होकर के अध्ययन करने से हम शास्त्रों के साथ उसी तरह से पले और बढ़ेंगे जैसे हम अपने गुरुजनों और साधु संतों के साथ पलते और बढ़ते हैं। हम जिस तरह का संग करेंगे उसी तरह की हमारी भावना डेवलप होगी। इसीलिए कलयुग में दो महत्वपूर्ण शास्त्र बताए गए हैं और वो है भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। बहुत सारे शास्त्रों को अध्ययन करने जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास कलयुग में समय नहीं है। ये दो अध्ययन करो, जीवन से मुक्त हो सकते हैं। कहा जाता है इस प्लैनेट अर्थ पे पूरे शास्त्र ज्ञान का केवल 6% नॉलेज अवेलेबल है, 94% इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट अदर हायर प्लैनेटरी सिस्टम। तो ये 6% नॉलेज से हम परफेक्ट नॉलेज कैसे प्राप्त करेंगे? जितना दिया गया है उसको अगर हम अपने में आत्मसात कर लेंगे तो हायर नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। 6% में भगवान ने उतना ज्ञान दिया है जिससे हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। वेदेश्च सर्वे, ये 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं, अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं कि वेदों को मैंने बनाया है, वेदों का नोअर मैं हूँ, मैं जितना जिसको समझाता हूँ वही उतना समझ सकता है, और वेदों का एकमात्र उद्देश्य क्या है, मुझे जानना। जो व्यक्ति कृष्ण को जान गया, जो व्यक्ति कृष्ण को समझ गया, कृष्ण की भक्ति में लग गया, उसने वेदों के संपूर्ण ज्ञान को जान लिया। शास्त्र में कहा गया है, एन जन्म सहस्त्राणी गोविंद विनिवेशये तन्मुखे हरिनामानी सदा तिष्ठन्ति भारत। कहते हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, जो व्यक्ति 1000 जन्मों तक गोविंद भगवान की सेवा किया है, कृष्ण की सेवा किया है, वही व्यक्ति अपने मुख से हरिनाम जप कर सकता है। आप लोग को सरप्राइज होगा, ये हरिनाम इतना सरल है फिर भी जीवा पे क्यों नहीं आता है, क्योंकि बैकग्राउंड क्लियर नहीं है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक हम कृष्ण को नहीं समझ सकते, तब तक कृष्ण की शरण नहीं ले सकते। पर भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे समझ गया है वो मेरी भक्ति किए बिना रह नहीं सकता है। तो जो लोग कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं इसका अर्थ है कि उन्होंने कृष्ण को नहीं समझा है। सो हम किसको फॉलो करेंगे कृष्ण को समझने के लिए? अनासक्त इंद्रिय निग्रही दयालु विश्वास पात्र आत्मानुभूत भगवत भक्त। इसमें 4 संप्रदाय के भक्तों को दिखाया गया है, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, निंबाकर आचार्य कुमार संप्रदाय, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय। ये 4 बोनाफाइड संप्रदाय हैं और इनके क्वालिटीज दिए गए हैं। ये जगत से अनासक्त हैं भौतिकता से, ये इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले लोग हैं, ये जीवों पर दया करने वाले लोग हैं, ये इनके ऊपर आप अपने जीवन को समर्पित करके इन पर विश्वास कर सकते हो, और ये रियलाइज किए हुए हैं जगत को, आत्मा अनुभव है इनको, स्वयं कौन है, भगवान कौन है उसका अनुभव है इनको, और ये सबसे बड़ा भगवत भक्त हैं। आप इनका अनुसरण करना चाहोगे या साइंटिस्ट लोगों का अनुसरण करोगे? इसमें कुछ साइंटिस्ट लोगों के भी फोटोज दिए गए हैं। हाँ, साइंटिस्ट लोगों का अनुसरण करोगे जो संसार से आसक्त हैं? मैं IIT में रह चुका हूँ प्रोफेसर्स के बीच में, दे आर हाईली क्वालिफाइड PhD फेलोज, PhD पोस्ट डॉक्टरल्स, लेकिन वो लोग आपस में ऐसे लड़ते हैं जैसे कुत्ते बिल्ली लड़ते हो। घर में इस तरह से रहते हैं, चारों नियम तोड़ते हैं, मांसाहार करते हैं, नशापान करते हैं, व्यभिचार में भी लिप्त मिलते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ों में लिप्त देखे जाते हैं। दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर देयर सेंसेस, उनकी इंद्रियों पर उनको कोई नियंत्रण नहीं है, दयाहीन है, पशुओं को चीर देते हैं, मार देते हैं, मांस खाने वाले दयाहीन होते ही है ना, जब तक मारेंगे नहीं किसी को तो खाएंगे कैसे उसके मांस को, दयाहीन होते हैं, स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ के लिए लड़ाई करते हैं, उनका लोगों का कल्याण करने की कोई इच्छा नहीं होती है, विश्वासघाती होते हैं, आपसे कहेंगे कि आप अपना पैसा जमा करो और आपको हम लेके जाएंगे कहाँ पे, चंद्र पे लेके जाएंगे। चंद्रमा पे एक बार जाकर के आए, दोबारा कौन ही गए, जब जाना इतना आसान था तो चंद्रमा की भूमि तो बेच डाले, है ना, वहाँ की भूमि जो है लोगों को बेच डाले, मूर्ख लोगों ने खरीद भी लिया, लेकिन एक बार चंद्रमा पे जा करके दोबारा नहीं गए, उससे परे मंगल पे जाने का प्लान भी बना रहे हैं, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति पूछ सकता है, जब चंद्रमा पे यहाँ वहाँ जाना इतना आसान है तो अभी तक वापस क्यों नहीं गए, इसका मतलब वो लोग चंद्रमा पे गए ही नहीं, तो कहाँ गए थे फिर, मूर्ख बनाया लोगों को अफ्रीकन के डेजर्ट्स में जा करके। एंड 50 ईयर्स बिफोर 1950s में अमेरिकन लोगों ने यह प्रूव कर दिया कि दीज पीपल नेवर वेंट टू मून, एंड देर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल फॉर दिस, दैट नेवर वेंट टू मून, दे चीटेड पीपल लाइक दैट। साइंटिस्ट कम्युनिटी कितने तरह से जगत को चीट करती है, इसका सारा डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल है, अगर आप सर्च करेंगे जानने की कोशिश करेंगे तो। फिर भी संसार के लोग जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्यों, क्योंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मोहग्रस्त, भगवत द्रोही और अभक्त, ऐसे लोगों का अनुसरण करना चाहेंगे? चॉइस इज योर्स, आप किसका अनुसरण करेंगे, चॉइस इज योर्स। जानने की कोशिश किया कि शास्त्र से जब भगवान के ज्ञान प्राप्त होते हैं तो शास्त्र अनेक प्रकार के क्यों हैं भाई, शास्त्र अनेक प्रकार के नहीं होने चाहिए, एक ही शास्त्र सबके लिए होना चाहिए, है ना। और अगर शास्त्र में भगवान के बारे में बताया गया है तो बहुत सारे विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के भगवान के स्वरूप को बताया गया, शंकर को भगवान बताते हैं, गणपति को भगवान मानते हैं कुछ लोग, है ना, विष्णु पुराण में विष्णु को भगवान मानते हैं, शिव पुराण में शिव जी को भगवान मानते हैं, देवी पुराण में देवी को भगवान मानते हैं, इवन हिंदू ग्रंथ में है ना, क्रिश्चियनिटी में यहोवा को भगवान मानते हैं, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हो गए हैं, प्रोटेस्टेंट अलग है, कैथलिक्स अलग है, ऐसे उनमें भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, मुसलमानों में भी बहुत सारे ब्रांच हैं। तो इतने सारे ब्रांचेस क्यों हैं? देयर इज वन बुक, आई विल रिकमेंड यू टू रीड दैट बुक इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, बाई भक्ति विनोद ठाकुर। द बुक का नाम है दशमूल तत्व, यू कैन राइट दैट इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर इट। दस मूल तत्व, 10 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स। वो 10 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स में डिस्कस करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि देर वॉज ओनली वन रिलीजन, दैट इज कॉल्ड सनातन धर्म, इटर्नल रिलीजन ऑफ द लिविंग एंटिटी, विशेष करके मनुष्य का, मानव का एक ही रिलीजन है, एंड दैट इज टू सर्व द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो फिर इतने रिलीजन कहाँ से आए? ये सारे जितने रिलीजन आए हैं, दे आर ऑफ शूट्स ऑफ द सेम रिलीजन। जैसे एक पेड़ के एक ट्रंक से बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं ना, उसी तरह से कुछ लोगों ने विचारधारा का खंडन करके, विचारधारा का मेल करके, कुछ इंटरप्रिटेशन करने वालों ने अलग अलग ब्रांचेस निकाल दिए, इसलिए धर्म के अनेक प्रकार हो गए। अन्यथा धर्म अंततः एक ही है और सभी मनुष्यों का एक ही धर्म है। सो भगवान एक है या अनेक हैं, साकार हैं या निराकार हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और अगर भगवान एक हैं, साकार हैं, तो ये देवी देवता जो हैं उनको, वो लोग कौन हैं, डेमीगॉड्स के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो विभिन्न प्रकार के शास्त्र क्यों हैं? विभिन्न शास्त्र विभिन्न स्तर के लोगों के लिए हैं, देश काल और पात्र के अनुसार ये प्रकाशित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, और सार वही रहता है ऑफकोर्स, इसमें देखिए, संपूर्ण सृष्टि में एक ही धर्म है और एक ही शास्त्र है, परंतु देश काल और पात्र के अनुसार समय समय पर वो प्रकाशित होता रहता है। सनातन धर्म सृष्टि के आरंभ से प्रकाशित है, ये भगवान ने भगवद गीता में स्वयं बताया है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेना प्रसविध्यस्य मे स्तोष्ट कामधो। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संतति को रचा और उनसे कहा कि तुम यज्ञ से सुखी रहो और अंततः मुक्ति को प्राप्त करो। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो बाकी जितने भी ये डिफरेंट ब्रांचेस निकले इस सनातन धर्म से, वो कब प्रकट हुए उसके बारे में सुनो। यद्यपि ये जो सनातन धर्म है ये अनादिकाल से है, जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से है, फिर भी अर्जुन को लक्ष्य बना करके 5000 वर्ष पूर्व भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने प्रकट किया। बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म 3700 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के अवतार से प्रकट हुआ, जो साक्ष्य ओरिजिनल बुद्धा थे, विष्णु बुद्धा। 2700 वर्ष पूर्व साक्ष्य सिंह बुद्धा ने इसको प्रपाउंड किया। उसके बाद में ईसा मसीह के शिक्षा के द्वारा 2000 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म प्रकट हुआ, मोहम्मद पैगंबर को लक्ष्य बना करके 1300 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म प्रकट हुआ है। दिस यू कैन फाइंड आउट इफ़ यू वांट, यू कैन सर्च ऑन द नेट, यू कैन गेट ऑल दिस डेटा। सनातन धर्म अनादिकाल से सृष्टि के साथ ही प्रकट हुआ है। सो इसीलिए संपूर्ण सृष्टि में एक ही धर्म है और एक ही शास्त्र है, लेकिन ज्ञान को समझने और आत्मसात करने की योग्यता के आधार पर इसको लोगों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। कठिन समझकर लोग इसको रिजेक्ट न कर दें, इसलिए विभिन्न स्तर के लोगों के लिए इसको अलग अलग रूप में प्रकट किया गया है। जीव को क्रमशः प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में इस सहायता करता है। जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, तो अगर उसको केजी में ही अगर आप उसको टेंथ का सब्सटेंस पढ़ाने लगोगे तो क्या करेगा? उसको बहुत कठिन लगे तो पढ़ना छोड़ देगा। लेकिन अगर उसको ग्रेजुअली ABCD पढ़ाते पढ़ाते आप उसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए, ज्योमेट्री पढ़ाइए, जो कुछ पढ़ाइए, वो जैसे जैसे स्टैंडर्ड उसका बढ़ता जाएगा, वो चीज़ों को आत्मसात करता जाएगा, डेरिवेटिव समझेगा, इंटीग्रेशन समझेगा, उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें समझेगा, शब्दों की रचना करना जानेगा, उसके गूढ़ रहस्य को ढूंढ करके निकाल सकता है, उसमें क्या बताया गया उसको जान सकता है, तो वो ग्रेजुअल होता है। अगर किसी बच्चे को, छोटा बच्चे को एक भगवद गीता का श्लोक दे दो और बोलो इसमें क्या लिखा गया, बताओ क्या बताएगा बेचारा वो? अरे बच्चा क्या बताएगा, बूढ़े लोग नहीं जब तक ज्ञान प्राप्त कर लेते ठीक से, उनको नहीं पता है कि भगवद गीता में क्या बताया गया है। बहुत सारे फिलासफर साइंटिस्ट लोग जो है भगवद गीता के एक अक्षर को समझने में बहुत कठिन है। मैं तो भगवद गीता पढ़ाता हूँ, इसलिए भगवद गीता का बहुत कंपेरेटिव स्टडी करता हूँ। भगवद गीता में यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे क्या कहा गया है, कौन सी भगवद गीता परफेक्ट है जो हमको परफेक्ट नॉलेज दे रही है, तो भगवत गीता अनेक है, लेकिन उसको समझने के लिए ग्रे सब्सटेंस चाहिए इधर, उसके ज्ञान को जानने के लिए। तो स्टैंडर्ड को ग्रेजुअल बढ़ाया जाता है। यू कैन नॉट स्टडी ऑल द थिंग्स टुगेदर राइट नाउ, इसलिए धीरे 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 जो प्रोसीजर बताया गया है उसके अनुसार हम समझ करके पढ़ेंगे, तब ये नॉलेज हमारी समझ में आ सकता है। जैसे आरंभिक स्कूल में, हाई स्कूल में और कॉलेज में सिखाए जाने वाला गणित का उदाहरण देखिए, अगर छोटे बच्चों से कहो 2-5 क्या होता है तो बच्चा बिविल्डर हो जाएगा, है ना। लेकिन बड़े बच्चे से कहो 2-5 क्या होता है तो बोले 3। लेकिन उसको अगर बोलो डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन से, इंटीग्रल से, उसको वो बच्चा वो समझ पाएगा। 10th का बच्चा उसको समझाओ तो उसको समझ में नहीं आएगा कि d/dx इज इक्वल टू वो सब क्या होता है, हाँ उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बड़ा बच्चा जो उसको जान रहा है और वो ग्रेजुअली समझ करके आया है, देन ही कैन अंडरस्टैंड इट। उसी तरह से शब्दों में छुपे हुए कोड को भी वो जान सकते हैं। विभिन्न धर्मों शास्त्रों में समानता है, तो संबंध क्या है, संबंध भगवान से है और हम सब उनकी संतान है, ये सारे धर्म कहते हैं। सारे धर्म क्या कहते हैं, हमारा संबंध किससे है, भगवान से है, हम सब उसके अंश हैं। उस संबंध को पुनः स्थापित कैसे करें, दो तरीका है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब होता है कुछ डूस एंड निवृत्ति का मतलब होता है डोंट्स। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप भक्ति के मार्ग में प्रगति करना चाहते हो तो देर आर 4 डूज एंड 4 डोंट्स एटलीस्ट यू शुड फॉलो, अदरवाइज देर आर मेनी 64 आइटम्स। ऑफ दैट 64 आइटम्स देर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन, थाउजेंड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन वन हैज टू फॉलो टू बिकम ए परफेक्ट डिवोटी। पर प्रभुपाद ने कहा कि एटलीस्ट फॉलो दिस 4। ये 4 फॉलो जो करेगा वो रूल्स रेगुलेशन प्रवृत्ति और निवृत्ति कहलाता है। प्रवृत्ति क्या है, ABCD, एसोसिएट विद डिवोटीज, रीड बुक्स, दैट इज शास्त्रा नॉट नॉवेल, हाँ रीड बुक्स, स्टडी शास्त्रास, देन सी चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, एंड डी डाइट, टेक कृष्ण प्रसाद, दिस इज डू। एंड डोंट्स क्या है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, दीज आर द 4 थिंग्स दैट ब्रेक्स द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा, so one should avoid that, and if someone follows this then he will realize this, gradually he will definitely realize what is being taught. agar koi nahi follow karta hai to usko realization nahi aayega, kyun, kyunki adhyatma ek aisa vishay hai jo hum dusre ke anubhav se nahi seekh sakte, usko khud ko anubhav karna padega, aur khud ko anubhav karne ke liye uske jo doctrines hai, uske jo tenets hai, us tenets ko follow karna padega। इसीलिए उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति के बताए गए मार्ग पर चलना होगा। भगवान से अपने संबंध का अनुभव कैसे करना होगा, उनसे प्रेम करके भगवान से हम अपने संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कुरान में भी कुछ डूस एंड डोंट्स बताया गया है, बाइबल में कहा गया है, ए मैन ऑफ लेस फेथ, आई हैव ए लॉट टू टेल यू बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट नाउ। जीसस क्राइस्ट कहते हैं अपने लोगों से कि मैं तुमको भगवान के बारे में बहुत कुछ बचाना चाहता हूँ, लेकिन आपका इस समय क्वालिफिकेशन नहीं है जो भगवान के बारे में और कुछ आप सुन सकते हो। क्यों, ही स्टार्टेड टीचिंग टू द फिशरमैन, यू नो मछली पकड़ने वाले लोग थे जीसस, उनको प्रीच करना शुरू किए थे। देर इज अ मूवी कॉल्ड जीसस ऑफ नासरत, किसने देखा है वो मूवी, यू शुड सी दैट मूवी, इट्स वेरी नाइस मूवी, वेयर जीसस का लाइफ पूरा बताया गया है, वॉट ही स्टार्टेड, वॉट वॉज हिस मिशन, हुम ही प्रीच्ड, वॉट ही वॉन्टेड टू एक्चुअली टेल टू द वर्ल्ड, एंड हाउ दिस पीपल टूडे दे आर एक्चुअली मिसइंटरप्रेटिंग वॉट जीसस हैड सेड एंड डूइंग एग्जैक्टली कॉन्ट्रेरी वॉट जीसस वॉन्टेड पीपल टू डू हियर, एंड वॉट टू स्पीक ऑफ पीपल कमिंग आफ्टर वर्ड्स, जीसस फर्स्ट डिसाइपल्स ओनली स्टार्टेड मिसइंटरप्रेटिंग इट। इफ यू विल सी ऑल दोज थिंग्स देन यू कैन रियलाइज योर सेल्फ, सारे नॉलेज उपलब्ध हैं, आपको केवल ढूंढना है उसको। कुरान में कहते हैं दाउ शैल नॉट हैव सेक्स विथ योर वाइफ, मदर एंड सिस्टर, दिस इज मेंशन्ड इन द 4th सूरा वर्स नंबर 23 एंड 24। हुम दिस नॉलेज इज टोल्ड, ये नॉलेज किसको कहा जाता है बताइए। अगर कोई व्यक्ति चोरी नहीं करता है तो उसको बोलेंगे चोरी मत करो, हा? अगर कोई व्यभिचार में नहीं लिप्त है तो उसको कहेंगे व्यभिचार में मत करो। जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनको ये नॉलेज दिया जाता है, सो ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम, डोंट एंगेज इन टू सच हीनियस एक्टिविटी, यू कैन नॉट ग्रो इन योर नॉलेज, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द हायर सब्जेक्ट मैटर। किसको कहा जाता है जी? कुरान में कहा गया है इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेक्स डिजायर देन यू कैन मैरी फोर पीपल एंड इवन देन यू इफ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट देन यू कैन हैव मेनी कीप्स प्रोवाइडेड यू आर एबल टू प्रोवाइड देम राइट. क्रिश्चियनिटी में कहते हैं इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेक्स डिजायर इंस्टेड ऑफ गेटिंग बर्नड इन टू द सेक्स थॉट बेटर गेट मैरिड. और सनातन धर्म के स्क्रिप्चर में क्या कहते हैं? इफ यू वॉन्ट टू प्रोग्रेस देन यू हैव टू कंट्रोल योर सेक्स डिजायर, यू हैव टू बिकम ब्रह्मचारी. हाँ, ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? मनसा वाचा कर्मणा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य सकथ्यते. ब्रह्मचर्य मीन्स ही शुड नॉट इवन थिंक ऑफ वुमन इन द माइंड, ही शुड नॉट वर्बली हैव सम एंजॉयमेंट विद द वुमन एंड ही शुड नॉट हैव एनी फिजिकल रिलेशन विद द वुमन राइट. दैट इज ब्रह्मचारी हुम दिस इज टोल्ड क्वालिफाइड पर्सन को. अर्जुन का प्रॉब्लम ये नहीं था कि मैं इनसे लड़ूं या नहीं लड़ूं, ये सब अर्जुन नहीं पूछ रहा था, अर्जुन को ये ज्ञान नहीं दिया गया. अर्जुन का प्रॉब्लम क्या था? दीज आर माई रिलेटिव्स, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद देम राइट. इसलिए भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि चोरी मत करो, अपने रिलेटिव्स के साथ में ये फालतू चीजों में मत एंगेज हो जाओ. ही स्टार्टेड टेलिंग देम यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर बियॉन्ड दिस बॉडी, यू आर ट्रैप्ड इन दिस बॉडी, यू आर बियॉन्ड दिस बॉडी, यू आर आत्मा. बट हुम दिस नॉलेज इज टोल्ड. सो नॉलेज किसको दिया जाता है? क्वालिफिकेशन, पात्रता के अनुसार. भगवद गीता में भगवान कहते हैं आई एम गिविंग यू कंप्लीट नॉलेज बियॉन्ड विच देयर इज नथिंग मोर टू बी नोन. ज्ञानम तेगस विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नोह भूयोन्यो ज्ञातव्यम अवशिष्यते. कृष्णा इज पर्सनली टेलिंग अर्जुना विदाउट अर्जुना आस्किंग हिम. Krishna started telling Arjuna that Arjuna, I am very happy with you because you are my devotee and my friend. I want to give you this understanding. Nowhere in other scriptures it is mentioned. In the other scriptures also, some clandestine way, कुछ छुपे तरीके से भगवान के बारे में विचार किया गया है, हाँ, लेकिन लोग जो है उसको जानते नहीं हैं. क्या बताया गया देखते हैं. पहले हम जानते हैं भगवान की अगर हमको भक्ति करना है, अर्चना करना है, तो कितने तरह के लोग भगवान की अर्चना में लगते हैं, उसके पीछे इम्पेटस क्या होता है. कुछ लोग भय के कारण भगवान की भक्ति करने में लगते हैं. क्या भय रहता है? भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो नरक में चले जाएंगे. येस्टरडे वी हर्ड दैट पास्कल्स प्रोपोजिशंस है ना, वन ऑफ द प्रोपोजिशन वॉज दैट कि अगर हम भगवान की बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा, हमको नरक में जाना पड़ेगा. और कुछ लोग जो है भगवान हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं इसलिए हम भक्ति करते हैं. सब माता जी टोल्ड हियर यस्टरडे, हाँ, कि भगवान हमको जो चाहिए वो सप्लाई करते हैं, हमको अच्छे तरह से रखते हैं, इसलिए हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए. और समबडी टोल्ड भगवान के प्रति हमारा ये कर्तव्य है, अगर हम अपना कर्तव्य ठीक से करेंगे तो हमको सुख मिलेगा, इसलिए हम भक्ति करते हैं. सो कर्म ड्यूटी मान करके हम भगवान को मानते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, पर एक्चुअल भगवान से प्रेम के कारण जो अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी रुकावट, किसी रुकावट के बिना और बिना किसी हेतु के, बिना किसी इच्छा के, जो केवल भगवान से प्रेम करता है इसलिए भगवान की सेवा करता है, दैट इज एक्चुअली भगवान की भक्ति. वो भगवान को जानने जैसा है. नहीं तो इवन इन इंडिया ऑल्सो 99.9% पीपल गो टू टेम्पल ओनली फॉर आस्किंग बेगिंग बॉल. और कुछ लोग भगवान से थोड़ा ट्रेड भी कर लेते हैं कि यू कीप दिस मच एंड गिव मी दिस मच, दिस इज माय लिस्ट. बट दैट इज नॉट एक्चुअली भक्ति. भक्ति मतलब प्रेम. प्रेम करने के लिए किसी व्यक्ति से हमको कुछ मांगना नहीं पड़ता है. सनेदर वेरी हाई सब्जेक्ट मैटर. सो कौन से ग्रंथों से भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम की चर्चा होती है? वो है श्रीमद् भगवद्गीता और श्रीमद् भागवतम. भागवतम के पहले स्कंद के पहले ही अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया गया है, धर्म प्रोजित कैतो वत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद्भागवतम महामुनि कृते कृते किं वा परैरीश्वर. स्टार्टिंग लाइन में कहा गया है धर्म प्रोजित कैतव अत्र, ऑल चीटिंग रिलीजन्स विच चीट्स द ह्यूमन बींग बाई गिविंग दिस थिंग और दैट थिंग और दैट थिंग. धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थ उपकल्पते. धर्म किसके लिए है? मनुष्य जीवन को प फ ब भ म, ये पवर्ग कहलाता है. प मतलब परिश्रम, फव मतलब फेन, परिश्रम करने से फेन आता है। ब से क्या होता है, बंधन होता है, भौतिकता का बंधन, और म से मृत्यु। इसके लिए नहीं है धर्म, इससे परे निकलने के लिए, अपवर्ग। इससे परे कहाँ पे है, भौतिक जन्म में प फ ब भ म है, भय है, मृत्यु है। लेकिन भय और मृत्यु कहाँ नहीं है, वैकुंठ जगत में है, भगवत धाम में है। तो धर्म का आचरण भगवत धाम जाने के लिए करना चाहिए। भगवत धाम हम भगवान की सेवा करके जा सकते हैं, यहाँ से कोई पैसा खर्च करके टिकट निकाल करके हम नहीं जा सकते हैं। भगवत धाम जाना एक ही टिकट है, जाना है हरि धाम, टिकट है हरि नाम। अगर भगवान धाम में जाना है तो हरि नाम से ही हम भगवान धाम पहुँच सकते हैं। और इसका प्रमाण तुकाराम महाराज हैं आपके सामने, है ना। यहाँ से देहू बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कहाँ पे है, पुणे से पहले आता है देहू गांव। और शिवाजी जब थे उसी समय तुकाराम महाराज प्रकट हुए थे। तुकाराम महाराज के देखते देखते, पूरे गांव वालों के देखते देखते, उनके सामने वैकुंठ से एक विमान उतरा, और उस विमान में बैठ करके और तुकाराम महाराज जो है सबको टाटा करते हुए, आमी जातो आमचा गावा, आमचा राम राम घ्यावा, हाँ बोल करके वो यहाँ से निकले। जाते जाते बोल के भी गए, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम भी आ सकते हो, मैं जो जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जाने के लिए वैकुंठ विमान मेरे लिए क्यों आया, क्यों, क्योंकि मैं जीवन भर भगवान का नाम जपता रहा, जय जय राम कृष्ण हरि, ये नाम जपता रहा इसलिए मेरे लिए ये विमान आया। आप भी ये नाम जपते रहोगे तो आपके लिए भी विमान आएगा, और वहाँ हमारी मुलाकात फिर से होगी। तो हम भी जा सकते हैं। विशुद्ध प्रेम की चर्चा हुई है भागवत में, सारे धर्मों को, प्रोजित धर्मों को, जो चीटिंग रिलीजन है उसको निकाल दिया गया है। शास्त्र हमें भगवान के बारे में क्या बताते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। हमें शास्त्रों पर विश्वास क्यों करना चाहिए, तो विश्वास क्या है पहले ये समझना चाहिए। विश्वास करना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। सद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। कृष्ण के भक्ति कर रहा हूँ मैं, और मुझे कुछ जगत में करने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति को ये विश्वास हो गया उसको विश्वास कहते हैं। और अगर देखा जाए तो हम सोचेंगे कि हम भगवान पे क्यों विश्वास करें, तो हम अपने जीवन में किस चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं। जब हम टैबलेट खोल के खाते हैं तो हम सोचते हैं क्या कि ये जहर का टिकिया है, हो भी सकता है ना, कभी हम सोचते हैं ये जहर का टिकिया है। या जब हम रिक्शा में बैठते हैं या कार में बैठते हैं तो ड्राइवर से पूछते हैं डू यू हैव बोनाफाइड लाइसेंस, तुमको गाड़ी चलाने आती है क्या, हाँ वी डोंट आस्क। हम फेथ करके तो बैठ जाते हैं, हम डॉक्टर के दी हुई वो पिल के ऊपर फेथ करके तो खा लेते हैं, है ना। नाई के पास जा करके हम अपना सिर में वस्त्र घुमाने के लिए बोलते हैं उसको है ना, वो छुरा चलाता है, ब्लेड चलाता है, तो हमको पूरा विश्वास है कि ये मेरा गला नहीं काटेगा, है ना। क्या हम उसको पूछते हैं कि भाई तुम्हारे सामने मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ, काट दोगे या मार दोगे, पूछते हैं, नोबडी आस्क दैट, है ना। बस में सवार होते हैं ड्राइवर को लाइसेंस नहीं पूछते हैं, है ना, तुम्हारे पास में बस का बैच है क्या, नहीं पूछते हैं। तो जीवन में ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें हम विश्वास नहीं करते हैं, बताइए कौन सा चीज़ है जिसमें हम विश्वास नहीं करते हैं। तो भगवान में विश्वास करने में क्या दोष क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भगवान में क्यों विश्वास करें, अरे मुझे बताइए कि जीवन में किस चीज़ में आप विश्वास नहीं करते हैं। शास्त्र हमको भगवान के बारे में बताते हैं, वी डिस्कस दिस, माँ के समान है। लेकिन भगवान के बारे में जो हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज़ नाउ गोइंग टू बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर। और वो स्क्रिप्चर को समझने के लिए मैं भगवान भगवान जो कह रहा हूँ मैं किसको रिफ़र करूँगा। मैं अगर कृष्ण को भगवान बोलूँगा या भगवान बोलूँगा तो आपके मन में भी भगवान के बारे में बहुत सारा भ्रम होगा। तो आपको लगेगा कि साईं बाबा को बता रहे हैं, कृष्ण को बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, दिस को बता रहे हैं, दैट को बता रहे हैं, दादर में एक भगवान है उसके बारे में बता रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, ये क्लिप देख करके यू कैन टेल मी हाँ what is there in this and why we should have common understanding about God, who God could be, हाँ ये इंग्लिश में है तो जो हिंदी वाले नहीं है तो उनके अगल बगल वाले थोड़ा बता दीजिए अच्छा रहेगा। I think it's 75% to you, Brahma, and 25% divided between the five of us. You got Kumar, myself, Tom, and the baby. That makes 5% for each one of us. Ah, Billy, you're cheating yourself. At this
happiness and the peace. Oh no, this is not. I've been a teacher, you know, I'm going to be honest. I'm sure you have a comment out here. And now, 25 divided by 5 is 5. You see, even the Bible wouldn't do well. No, but 5 goes into 25 5 times, you see.
No, you're wrong, Billy.
Now, I'm pretty good with the distance. Now, 5 into 25, 5 won't go into 2,
no.
But 5 goes into 5 once. Now, we didn't use the 2 before, so we turn it down here. Now, 5 into 20 goes 4 times.
There you are.
5 into 25, 14.
So, look, Mom, now let me figure out that multiplication.
तो क्या देखा आपने क्या देखा आपने हु वॉज राइट हु वॉज रॉन्ग कौन सही था कौन गलत था हाँ आपको अगर मैथमेटिक्स आएगा तो आप बताएंगे लेकिन उसका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का तरीका अलग है इनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन का तरीका अलग है उसको 25 को 5 से डिवाइड करके 14 मिलता है और एक को 25 को 5 से डिवाइड करके 5 मिलता है राइट एंड बोथ ऑफ देम आर थिंकिंग दैट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू वो सही है उसको मल्टीप्लीकेशन में भी वैसे ही उनको मिलता है और उनका एडिशन में भी उनको इसी तरह से रिजल्ट मिलता है सो अगर हम हमारे मन में भगवान के प्रति अपनी भाव भ्रांति को कायम रखेंगे फिर हम जो सुन रहे हैं देर विल नॉट बी ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज सो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग भगवान कौन है इसके बारे में जो कुछ पहले सुन रखा है उसको थोड़े देर के लिए क्या कीजिए एम्प्टी कर दीजिए और उसके बाद में अभी जो सुन रहे हैं फिर बाद में आप दोनों को कंपेयर करके फिर आप जानिए कि वास्तविकता क्या है ओके जैसे ये सद्गृहस्थ जो है ये जप कर रहे हैं हे माँ क्या जप कर रहे हैं हे माँ और जब हे माँ जप कर रहे हैं तो उनके माइंड में कौन है हाँ दुर्गा देवी है ना और उनका बेटा भी वही नाम जप कर रहा है हे माँ पर उसके मन में कौन है तो दोनों सेम शब्द यूज कर रहे हैं है ना पर मेंटालिटी मानसिकता अलग अलग है इसीलिए हमको बहुत जरूरी है कि ये सब चीज़ें जो है हम पहले जिसको मैं भगवान बोल रहा हूँ उसी को आवर यार्ड स्टिक ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस शुड बी कॉमन अगर मैं इतना बड़ा फुट रूल लेके आऊँ और कहूँ कि इतना बड़ा फुट रूल में एक फुट होता है और आपका फुट रूल इतना बड़ा रहे और कहो इतना बड़ा फुट रूल में एक फुट होता है तो इतना और इतना में डिफरेंस है अगर हम लोग किसी की लंबाई चौड़ाई मापेंगे तो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या आएगा गलत आएगा अलग आएगा है ना इसीलिए वी शुड हैव कॉमन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट सो भगवान के बारे में भगवान कौन है ये जानने के लिए हमको कुछ लक्षणों पर विचार करना पड़ेगा भगवान की परिभाषा क्या है वो जानना पड़ेगा अब यहाँ से आज का हमारा रियल डिस्कशन आरंभ होता है हम कितना कर पाएंगे डिपेंड करता है राधा गोपीनाथ प्रभु इज कमिंग टू गिव यू मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस सो पहला तो हमको ये जानना चाहिए कि भगवान उसको कहा जाता है जो प्रत्येक वस्तु का उद्गम है जिससे हर जगत में हर एक वस्तु प्रकट होती है ना हो आप जिसको भगवान मानते हैं सोचिए कि क्या वो व्यक्ति क्लेम करता है कि वो सब चीज़ों का उद्गम है एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम दैट पर्सन है कोई ऐसा एक्सेप्ट लॉर्ड कृष्णा, जो भगवद गीता में क्लेम करते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे निकला है, हर चीज मुझ पे आश्रित है, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित। वन हु अंडरस्टैंड्स दिस ही इज द इंटेलिजेंट पर्सन। दिस इज नॉट मी टेलिंग दैट, इट इज डायरेक्ट कृष्णा टेलिंग, विच आई एम जस्ट रिपीटिंग टू यू। सो अहम सर्वस्य प्रभव, भगवान जो है वो परम नियंत्रक हैं। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। भगवान कहते हैं कि इस जगत में मेरी अध्यक्षता में, मेरे आदेश से संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण ब्रह्मांड में चर अचर, चर माने जो मूविंग है, अचर माने जो नॉन मूविंग है, सो ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग एलिमेंट्स दे आर वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन। आई एम द, भगवान भगवद्गीता में कहते हैं यंत्र रूढ़ानी माया भ्रामयन सर्वभूतानी, मैं ये मानव रूपी मशीन जो है, इस मशीन में शरीर रूपी मशीन के ऊपर मैं एक मैकेनिक की तरह से, यंत्र को चलाने वाले की तरह से आरूढ़ हूँ। आई गिव द गाइडेंस टू आत्मा हाउ टू मूव एंड वेयर टू मूव, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। दिस इज ए वेरी प्रोफाउंड साइंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट बेस्ड ऑन भगवद्गीता। ये भगवान की परिभाषा है कि परम नियंत्रक हैं। भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वर है, हु इज द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट हियर। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का मैं महाईश्वर हूँ, सुप्रीम कंट्रोलर। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान जो है कृष्ण वो ईश्वर है, परम ईश्वर है, ईश्वर है परम कृष्ण। कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं कि मैं हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण है, और ईशोपनिषद में कहा जाता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजित। इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है, हमारे एक्सपीरियंस में है, हमारे एक्सपीरियंस के बाहर है, हमको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है। ही इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग। और भोक्ताराम हु इज द इंजॉयर ऑल्सो, भगवान कहते हैं आई एम द इंजॉयर ऑफ ऑल द लेबर्स एंड ऑस्टेरिटीज दैट यू अंडरगो। एग्जाम्पल दिया जा सकता है, आप मान लो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, उसमें बहुत सारे लेबर को आपने एम्प्लॉय किया है, लेबर पूरा क्या करता है, काम कर रहा है ना, लेबर पूरा काम कर रहा है, पर एक्चुअली उसका भोगी कौन है, उसका घर बन जाने के बाद में किसका घर होगा? लेबर बोलेगा मैंने इस पर नौकरी किया है तो ये मेरा है। कैन लेबर, लेबरर क्लेम जस्ट बिकॉज ही एग्जर्टेड सम लेबर कि दैट स्ट्रक्चर इज हिस, ये उसका घर है केवल ये क्योंकि उसने उस पर नौकरी किया है? सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। कृष्ण जो है इस जगत के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता इसलिए हैं क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी प्रकट है सब कुछ भगवान ने प्रोवाइड किया है, किसी अन्य व्यक्ति ने प्रोवाइड नहीं किया है। हमारे साइंटिस्ट, कल मैं आपको उसके बारे में, कल या परसों के दिन बता रहा था, एथिस्ट के बारे में, कम्युनिस्ट के बारे में, कम्युनिस्ट लोग ब्रेडी डेली ब्रेड देते हैं ना, तो कहाँ से लाके दिए ब्रेड? हैव दे प्रोड्यूसेस द ग्रेन फॉर द ब्रेड? हैव दे प्रोड्यूसेस द वाटर रिक्वायर्ड टू मेक दैट ब्रेड? हैव दे प्रोड्यूसेस द फायर रिक्वायर्ड टू मेक दैट ब्रेड? नहीं। अगर भगवान फायर को बुला लें, वाटर को बुला लें, तो वो क्या ब्रेड बना पाएगा? उसी तरह से भोक्ता कौन है? कृष्णा इज सुप्रीम इंजॉयर ऑफ एवरीथिंग, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और अगर हम वो अंडरस्टैंड करके, जैसे राजा होता है ना, राजा जिस गाड़ी में बैठता है उसी गाड़ी में उसका ड्राइवर भी बैठता है, शॉफर है ना, राजा को जो एसी मिलता है वही एसी उसके ड्राइवर को मिलता है ना। पर अगर राजा से अलग होकर के ड्राइवर जो है वो राजा के उस गाड़ी का या उस फैसिलिटी का मिसयूज़ करने लगे तो उसको रखा जाएगा? राजा जिस महल में रहता है ड्राइवर भी उसी महल में जाता है, राजा जो खाता है उसका बचा हुआ ड्राइवर भी खाता है, उसका नौकर भी खाता है ना। पर इवन इफ वन ऑफ देम स्टार्ट मिसयूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ दैट किंग, व्हाट विल हैपन? किंग विल किक देम ऑफ, है ना, राजा उनको भगा देंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि अनऑथोराइज तरीके से उसको उपभोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीवात्मा को भी हर चीज भोग के लिए मिलेगा लेकिन उसको अनऑथोराइज तरीके से नहीं करना चाहिए। सो इसीलिए शास्त्रों में बताया गया, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है भगवान किसको कहा जाता है, जार भगवत्ता है ते अन्य र भगवत्ता स्वयं भगवान शब्देर एत सत्ता। स्वयं भगवान कौन है? जिसके होने से ये जगत में सब कुछ एग्जिस्ट है। अगर वो नहीं रहते, वो शक्ति नहीं प्रदान करते, वो क्रिएट नहीं करते, तो इस जगत में ना आप होते ना हम होते, कोई भी नहीं होता, ना तो ये सृष्टि होती अगर भगवान नहीं होते तो, है ना। चूँकि भगवान है इसलिए हम सब हैं, और हम में इतनी सारी वैरायटी है, तो बुद्धिमानी क्या है? भगवान को मानना, भगवान को समझना, ना कि भगवान का प्रतिकार करना और तिरस्कार करना। कृष्ण प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं, वो मैंने बताया किस तरह से उद्गम है, जड़ पदार्थ, ये भौतिक जगत जो है। भगवान कहते हैं भूमि रपो अनल वायु खम्मना बुद्धि रे वच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये आठ वस्तुएं जिससे ये भौतिक जगत का निर्माण हुआ है, वो वस्तुएं मुझसे प्रकट होती हैं और वो मेरी भिन्न प्रकृति है। इससे परे भगवान कहते हैं कि चेतन जीव जो इसको मैनिपुलेट करता है और यहाँ पे आकर के सेकेंडरी क्रिएटर के रूप में वो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करता है। जैसे भगवान ने अन्न दिया, जल दिया, अग्नि दिया, अब हम उसको तीनों को मिला करके क्या करते हैं, अन्न को अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, है ना, अनेक स्वाद के व्यंजन बनाते हैं अन्न जल और फायर को मिला करके, है ना, है कि नहीं है। तो भगवान जो ओरिजिनल क्रिएटर है, हम में से कोई अन्न क्रिएट नहीं किया है, नॉट इवन ए ग्रेन ऑफ राइस, नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, लेकिन हम उसको मैनिपुलेट करके बहुत सारा डिश बनाते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ लाया होगा खाने के लिए, है ना। तो ये किसका मैनिपुलेशन है? वो अन्न जल फायर का मैनिपुलेशन है। सो उसी तरह से भगवान कहते हैं इसको मैनिपुलेट करने वाला जीवात्मा जो है, वो जीवात्मा विभिन्न प्रकृति से श्रेष्ठ है और वो भी मेरा ही अंश है। भगवान कहते हैं इसके विपरीत जितने भी अवतार हैं इस जगत में, विभिन्न अवतार, अवतार और अवतारी एक अलग अलग होते हैं। श्रीमद् ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी लिखते हैं, रामादिमूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठान नानावतारम अकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमानयो गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। जितने भी अवतार इस जगत में आते हैं, सारे अवतार कृष्ण से प्रकट होते हैं। इससे बड़ा विज्ञान है, इसको लेकर के जीव गोस्वामी ने लघु भागवतामृत नामक एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान अपने आप को कितने स्वरूपों में व्यक्त करते हैं, और वो सारे स्वरूपों को अगर हम अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, हम हमारा जीवन सफल कर सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जितने सारे अनेकानेक डेमी गॉड्स एटसेट्रा हैं, वो भी सब कहाँ से प्रकट हुए हैं? अहम सर्व, भगवान कहते हैं, न मे विदु सुरगणा प्रभवम नाम हर्षय अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वसह। सारे महर्षि, सारे देवता, सब लोग मुझसे प्रकट हुए हैं। वेदों का कथन है ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो, देवकी का पुत्र ब्रह्म जो कृष्ण नाम है वो भगवान है। कुंती महारानी कहती हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आपके अगल बगल में भी कुछ लोग होंगे जिनका नाम कृष्ण हो सकता है, है ना, पर क्या वो भगवान है? कृष्ण नाम होने मात्र से भगवान है नहीं। कृष्ण कौन, किस कौन कृष्ण है? देवकी और वसुदेव का पुत्र कृष्ण है। हो सकता है उसका देवकी और वसुदेव का, उसके पिता का नाम देवकी वसुदेव हो जो आपके बगल में रहता है, है ना? फिर कहते हैं नहीं, डबल कन्फर्मेशन, ही साइमल्टेनियसली अपीयर टू टू पीपल। देवकी वसुदेव के यहाँ भी प्रकट हुआ और वो साथ ही साथ नंद और यशोदा के भी घर में प्रकट हुआ। तो क्या मेरे बगल वाला जो कृष्ण है जिसके माता पिता का नाम देवकी वसुदेव है, वो कहीं और नंद और यशोदा के यहाँ भी प्रकट हुआ है क्या? कोई कोइंसिडेंस है? सो क्या कहती है, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गायों को आनंद देने वाला, इंद्रियों को आनंद देने वाला वो कृष्ण स्वयं भगवान है। वो कृष्ण स्वयं भगवान है। एक देवकी का पुत्र कृष्ण ही भगवान है, ये नारायण उपनिषद में बताया गया है। मोक्ष धर्म में कहा गया है, प्रजापतिं च रुद्रं च अप्यहमेव सृजामि वै तौहि न विजानीतो मम माया विमोहितो। मोक्ष धर्म में बताया गया है कि प्रजापति यानी ब्रह्मा को, रुद्रम यानी शिव को, च अप्यहम एव सृजामि, मैंने ही उनको, उनकी रचना की है, उनको निर्माण मैंने किया, वो मुझसे प्रकट हुए हैं। तो ही ना, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे नहीं जानते, क्यों? मम माया विमोहित, मैं अपने माया का कर्टन उनके ऊपर डाल दिया हूँ, इसलिए लोग नहीं जानते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते हैं इस जगत में। क्यों नहीं जानते हैं? क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अपने आप को माया के कर्टन से ढक देता हूँ। इसलिए लोग मुझे नहीं जान पाते हैं, इसलिए लोग मुझे नहीं जान पाते हैं। तो अगर भगवान को जानना है तो भगवान कहते मेरी शरण में माम एवं प्रपद्यते माया में इतम तरंतीते, उस व्यक्ति के लिए मैं माया का पर्दा हटा देता हूँ, फिर वो साक्षात मुझे देख सकता है। योगी लोग ज्ञानी लोग जो है वो भगवान को नहीं देख पाते, कैसे? क्यों? क्योंकि भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है इट्स लाइक डैजलिंग एफल्जेंस। आपने कभी देखा होगा सामने ट्रक एक जबरदस्त हेडलाइट जला के आ रहा है तो आपकी आंखें खुली हैं, आर यू एबल टू सी द ट्रक जहां से रोशनी आ रही है? व्हाट यू सी, आप क्या देखते हैं? एक बड़ा लाइट का पुंज देखते हैं, जो देखने से आपकी आंखें चौधिया गई है और आप आंखें बंद करना चाहते हैं। उसी तरह से भक्त कहता है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहृतं मुखं तत्त्वं पोषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टे। भगवान से कहता है कि हे प्रभु, आपने जो शरीर से अंग से ये जो ब्रह्म ज्योति प्रकट हो रही है इतना डैजलिंग इफल्जेंस, उसको हटा लीजिए थोड़ी देर के लिए, जिससे मैं आपको साक्षात रूप में देख सकता हूँ। तो भगवान की जो शरण में जाएगा भगवान उसको अपने आप को दिखा सकते हैं। जैसे अर्जुन ने कहा कि मुझे आपका विश्व रूप दिखाइए, तो भगवान ने कहा कि मेरा विश्व रूप इतना विशाल है उसको तुम छोटी छोटी आँखों से कैसे देख पाओगे? आपके भी आँखें हैं, आप यहाँ से बैठे बैठे कितना दूर तक देख सकते हैं? आप क्या जितना दूर तक देखते उतना ही विश्व है ना? पर चित यहाँ पे क्या कहते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि दिया कि भगवान ने अपने आप को सिंक्रोनाइज करके और भगवान ने अपने आप को अर्जुन की छोटी छोटी आँखों में दिखा दिया पूरी तरह से। मदर यशोदा को उन्होंने अपने मुख में, अपने छोटे से मुख में क्या दिखा दिया? संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा दिया। दिस इज कृष्णा, हु कैन डू दिस? वराह पुराण में कहा गया है नारायण परो देव तस्माद् जातो चतुर्मुख तस्माद् रुद्रो भवेत् एव सच सर्वगताम गतः। नारायण परो देव, भगवान जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी नारायण है, उनसे चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए हैं, उनसे रुद्र प्रकट हुए हैं। हाँ, और भगवान ही जो है वो सबको जानते हैं, बाकी उनको सब लोग नहीं जान पाते हैं। ये शास्त्रों की बात है। कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं। भागवतम में कहा गया एते चाम सकला पुंसस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके रिड्यन्ति युगे युगे। जब जब भी राक्षस यहाँ इस जगत में अधर्म का प्रपंच रचते हैं, अधर्म को बढ़ाते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं? देवताओं की या साधुओं की रक्षा करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए मैं हर युग में इस जगत में प्रकट होता हूँ। और इसी तरह से कलयुग में अगर अधर्म बढ़ता रहा तो भगवान अंत में कल्की के रूप में तलवार लेकर के आएंगे और क्या करेंगे? धर्म की स्थापना करेंगे और नास्तिक जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करके फिर से वापस चले जाएंगे। तो चूंकि भौतिक जगत है, आप पूछेंगे कि भगवान को बार बार ये एस्टेब्लिश करने क्यों आना पड़ता है? क्यों? क्योंकि ये जगत जो है, ये जगत का गुण है कि ये विनाशशील है। यहाँ पर सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होता है। आपका सौंदर्य, आपका शरीर, आपका प्रॉपर्टी, आपका सब कुछ धीरे धीरे क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। घर बनाया 25 साल के बाद में उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो खंडहर बन के गिर जाएगा। हाँ, ये भौतिक जगत का नियम है। इसी तरह से धर्म भी जो है भगवान यहाँ आकर के उसको स्थापित करते हैं, लेकिन कालांतर में योगो नष्ट परंतप, काल के अंतराल में नष्ट हो जाता है। इसलिए बार बार भगवान प्रकट होते हैं और अनेक प्रकार से आकर के अनेक धर्म की स्थापना करते हैं। कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्ण र शरीर सर्व विश्वेर विश्राम। संपूर्ण जगत कृष्ण में किस तरह से समाहित है। भगवान कहते हैं संपूर्ण जगत मुझ में है फिर भी मैं उसमें नहीं हूँ। दिस इज अनदर डाइकोटॉमी, दिस वी कैन डिस्कस समटाइम एल्स। सामान्य प्रकृति, भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत मेरी आज्ञा के अधीन है, मेरी इच्छा से बार बार इसका सृजन और प्रलय होता है। भगवान परम नियंत्रक हैं, इसीलिए वो संपूर्ण जगत को क्रिएट करते हैं। भागवत में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं यस्येक निश्वसित कालमथावलंब जीवन्ति लोम बिलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महांस यह यस्य कला विशेषो। ये महाविष्णु का फोटो है। विष्णुर्महांस यह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। महाविष्णु के शरीर के रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होता है और एक एक ब्रह्मांड जब प्रकट होता है तो वो 14 भुवन में डिवाइड होता है और उसमें हर एक ब्रह्मांड में भगवान का ही महाविष्णु का ही एक प्रकाश जिसको कहते हैं कारणोदकशायी विष्णु, वो कारणोदकशायी विष्णु हर ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हैं। फिर क्षीरोदकशायी विष्णु को एक रूप में परमात्मा के रूप में प्रत्येक कण कण में विष्णु विराजमान होते हैं और इस तरह से इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन भगवान स्वयं करते हैं। सब भगवान ये महाविष्णु जब ये उच्छ्वास बाहर लेते हैं तो सृष्टि का रचना होती है, सांस जब बाहर निकालते हैं। यस्य एक निश्वसित काल, उनका एक श्वसन की प्रक्रिया जितनी है, सांस बाहर निकालना और सांस अंदर लेना। एक सांस बाहर निकालने पे पूरी सृष्टि की रचना होती है और जब सांस अंदर खींच लेते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। वो महाविष्णु भगवान कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश के अंश है। कौन है? गोविंदमादि पुरुषम, गोविंद कृष्ण कौन है? उनके ये महाविष्णु जिन्होंने सृष्टि की रचना इस तरीके से करते हैं, एक श्वसन काल में सृष्टि का नाश और सृजन करते हैं, ये महाविष्णु भगवान के कला अंश के अंश के अंश है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कृष्णा, कृष्ण को समझने का क्या अर्थ है। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण गोविंद हैं। उनका शरीर हमारे शरीर के जैसा भूमि रपो अनल वायु से नहीं बना हुआ है, उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान जो हैं वो सर्वलोक हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है श्रीपतिर यज्ञपतिर प्रजापतिर ध्यापतिर लोकपतिर धरापतिर पतिर गतिशांधक विष्णु शाश्वताम प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति। भगवान श्री कृष्ण जो सभी भक्तों के आराध्य हैं, अनंत लक्ष्मियों के स्वामी हैं, समस्त यज्ञपति हैं, सभी जीवों के स्वामी हैं, बुद्धि के नियंत्रक हैं, समस्त लोकों के अधिष्ठाता हैं और जो इस धरती पर अवतार धारण किए हुए हैं वो कृपया मुझ पर दया करें। ये उद्धव जी बोलते भागवत में ये प्रसंग आता है। सो इसमें बताया गया है, ये फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये भौतिक जगत है वो वैकुंठ जगत है। गोलोक नामने निज धाम नितले चतस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, ये भौतिक जगत को देवी धाम कहा गया है। इसमें महाविष्णु लेटे हुए हैं, उनके रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है। जो छोटा छोटा दिखाया गया है उसमें एक को बड़ा करके दिखाया गया है, एक सैंपल दिखाया गया है जो 14 प्लेन्स में डिवाइडेड है। यू कैन जस्ट सी हियर 14 प्लेन्स में डिवाइडेड है और इसको त्रिभुवन कहा जाता है। मिडिल प्लानिटरी सिस्टम, हायर प्लानिटरी सिस्टम एंड लोअर प्लानिटरी सिस्टम। लोअर प्लानिटरी सिस्टम को क्या कहते हैं? तल, तलातल, अतल, बीतल, सुतल और पाताल, ये 6 नाम हैं। हाँ, और ये मिडिल प्लानिटरी सिस्टम है, वो भूलोक है जिसके अंदर हमारा ये प्लानिट अर्थ आता है और इसके ऊपर जो है स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महारलोक, सत्यलोक और सिद्धलोक, सिद्धलोक और सत्यलोक है जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। तो ऐसे डिफरेंट प्लेनेटरी सिस्टम है और जीवात्मा जब तक मुक्त नहीं होता है वो इसी ब्रह्मांड में इसी 14 प्लेनेटरी सिस्टम पे वो क्या करता है, इसी 14 प्लेनेटरी सिस्टम पे वो एक जगह से दूसरी जगह तक भ्रमण करता रहता है। ये ब्रह्मांड का जो कवरिंग है, ये कवरिंग, ये 8 तत्व जो है, ये 8 तत्व से मिलकर के बना हुआ है, भूमि, अप, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि और अहंकार। और ये प्रत्येक तत्व जो है 1,00,000 प्रकाश वर्ष थिकनेस, यू नो प्रकाश वर्ष राइट, लाइट एक साल में जितना ट्रेवलिंग करेगा उसको 1,00,000 प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक लेयर का थिकनेस जो मिनिमम अर्थ का थिकनेस है वो 1,00,000 प्रकाश वर्ष का थिक है, किलोमीटर। और उसका जो नेक्स्ट लेयर है भूमि अप, जल का जो लेयर है वो उसका ट्वाइस है, और उसका थ्राइस जो है वो एयर का लेयर है, उसके बाद में फायर का लेयर है। इस तरह से पूरे 8 तत्व को मिलाकर के आप सोच सकते हैं कि ये ब्रह्मांड का जो सेल है, जो अंडे का सेल जैसा होता है ना, ये एक का जो सेल है ब्रह्मांड का वो कितना थिक है। इज इट पॉसिबल फॉर अस टू पेनिट्रेट दैट? इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ओनली कृष्णा कैन टेक यू बैक होम, बैक टू गॉडहेड। सो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, ही अंडरस्टैंड्स कृष्णा इज सुप्रीम कंट्रोलर, एवरीथिंग ही कंट्रोल्स। जब इस सृष्टि का विनाश होता है तो ब्रह्मा का भी, विष्णु का भी, लॉर्ड शिवा का भी, सब लोग डिजॉल्व हो जाते हैं। उनका जब ड्यूटी ख़त्म, जैसे कंपनी बन गया तो डायरेक्टर आ गया, मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया, मैनेजर आ गया, प्यून्स आ गए, वर्कर्स आ गए, सब आ गया। जब कंपनी बंद पड़ गई, सब लोग गायब, सारा पोस्ट गायब है ना। उसी तरह से जब ब्रह्मांड प्रलय हो गया, सब लोग डॉर्मेंट हो जाते हैं। जब ब्रह्मांड की फिर रचना होती है, फिर सब लोग अपने अपने पोजिशन में आकर के सेवा करना शुरू कर देते हैं। सो जहर भगवत्ता है ते अन्य भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्द रही सत्ता, वही कृष्ण है, ये जानना चाहिए हमें। भगवान सर्वश्रेष्ठ भोक्ता राम है। इसमें तैत्रेय उपनिषद में बताया गया, रसो वैसह रसा रसाम ही यम लब्ध्वा आनंदी भवति। जब कोई आनंद घन भगवान, समस्त रसों के अधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को जान जाता है, वह निश्चित रूप से आनंद को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि भगवान इज द ओरिजिनल इंजॉयर ऑफ एवरीथिंग, एंड इसको समझना रियालिटी को समझने के जैसा है। भगवान जो है उत्कृष्ट रचनाकार हैं। आई टोल्ड यू अबाउट दिस। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का कारण हूँ, सब वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हुए मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो बुद्धिमानी इसमें है कि हम भगवान को समझें और भगवान की सेवा करके, भगवान से अपने संबंध को जोड़ करके वैकुंठ धाम को वापस जाएं। भगवान परम नियंत्रक और रचयिता है, जबकि जीव अति सूक्ष्म और शुद्र है। इसलिए हर जीव हर परिस्थिति में, चाहे वो वृद्धावस्था हो, मुक्तावस्था हो, हर परिस्थिति में भगवान के अधीन है। दैट वी हैव टू रियलाइज इट। भगवान का दूसरा परिभाषा देते हैं, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्च व शन्नाम भगैतिंगना। भगवान वो है जो सभी ऐश्वर्यों को असीमित मात्रा में धारण करता है, जैसे संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। ये पराशर ऋषि जो व्यासदेव के पिता थे, उनका दिया हुआ ये डेफिनेशन है भगवान का। सो इस संपूर्ण जगत के समस्त ऐश्वर्यों को 6 भाग में डिवाइडेड किया गया है। उसमें है संपत्ति, ऑल पावर, सभी संपत्ति। सो संपत्ति बताते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम। भगवान की संपत्ति इतनी है, उसका कोई आकलन करना बड़ा कठिन है। भगवान अर्जुन से शर्मा करके कहते हैं भगवद गीता में, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद उर्जित एव तत्तत्तेवाम गच्छत्तम तत्व तत्तेजो अंश संभव। कहते हैं अर्जुन, इस जगत में तुम जो कुछ भी देख रहे हो, इट्स जस्ट अ स्पेक ऑफ माई स्प्लेंडर। मेरे नख के अग्रभाग का एक जो चमक है, उसका ये संपूर्ण प्राकट्य है, और ये विश्व हम लोग जान नहीं सकते हैं, है ना। हमारे लिए कितना अद्भुत है, और भगवान कहते हैं इज जस्ट अ स्पेक, एक कणिका है, इज जस्ट अ स्पेक ऑफ माय स्प्लेंडर। मेरा ऐश्वर्य कितना है, उसको बता पाना कठिन है। समस्त ऐश्वर्य, समस्त सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टियाँ भगवान के तेज से स्फुरित एक स्फुलिंग के मात्र हैं। ये है भगवान। सो कहते हैं कि लोग कहते हैं हम जानते हैं भगवान कौन है, भगवान कौन है। भगवान मतलब भगवान की भगवत्ता को जानना चाहिए। जब तक हम भगवान की भगवत्ता को नहीं जाने, व्यक्ति के कर्तृत्व को नहीं जाने, तब तक हम व्यक्ति को कैसे जान सकते कि ये व्यक्ति है क्या। अगर यहाँ पे आपके बीच में आकर के मनमोहन सिंह बैठ करके और कथा सुन रहे हैं, और आपको पता नहीं कि मनमोहन सिंह कौन है, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड। तो आप उनका क्या रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे वेदांता इंडस्ट्रीज है ना, उसके मालिक हैं अनिल अग्रवाल। तो वो भगवान के भक्त हैं, भक्ति करते हैं, इनिशिएटेड डिवोटी हैं। उनका नाम है अनिरुद्ध दास। वो कभी कभी हमारे मंदिर में आते हैं संडे फीस्ट में या मॉर्निंग प्रोग्राम में, और चप्पल पहन के आएंगे, कुर्ता पैजामा पहन के आएंगे, ऐसे ही साधारण, और आकर के बैठ जाते हैं। जो लोग पहचानते हैं वो लोग जानते हैं, और जो लोग नए जानते हैं, जो लोग नहीं उनको पहचानते हैं, तो कभी कभी कोई बोलता है अरे थोड़ा उधर सर को वो आकर के नीचे बैठ जाते हैं। पर अगर जो लोग जानते हैं कि ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ वेदांता इंडस्ट्रीज, हाँ, वेदांता इंडस्ट्रीज का कितना जिम्बाब्वे पूरा, ऑलमोस्ट ही हैज परचेस्ड द इंटायर जिम्बाब्वे कंट्री। ओडिशा में उसने पूरा खरीद करके रखा हुआ है, पूरा ओरिसा, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ओरिसा इज अंडर हिज कंट्रोल, ही इज दैट इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडिया का टॉप नंबर का इंडस्ट्रियलिस्ट है, वन ऑफ द टॉप रैंकर्स इंडस्ट्रियलिस्ट। एंड वो हमारे बीच में आकर के जब बैठता है तो लगता है अरे कितना साधारण व्यक्ति है, लोग समझते नहीं कि कौन है ये, पर जब इंट्रोड्यूस करो तो आदमी बैफल्ड हो जाता है। उसी तरह से भगवान जो है, उनको जब हम जानते नहीं हैं, इसीलिए हम भगवान को तुच्छ मानते, अपने जैसा मानते हैं। कुछ लोग कहते तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है। हाँ, अरे भगवान कौन है, क्या कर सकता है वो जानेंगे तो किसी तुच्छ व्यक्ति को भगवान कैसे बोल सकते हैं। मायावादी जिनको ज्ञान नहीं होता है वो लोग सबको बोलते हैं दरिद्र नारायण, नारायण दरिद्र है। अरे नारायण लक्ष्मीपति है, दरिद्र कैसे हो सकता है। तो भगवान के ऐश्वर्य को समझना चाहिए, भगवान के अंदर शक्ति कितनी है। भगवान ने संपूर्ण गोवर्धन धारण कर लिया। शास्त्र में बताते कि भगवान की कितनी शक्तियां हैं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् समासश्च अधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर् विविधैव श्रूयते स्वभाविकी ज्ञान बल क्रियाश्च। उनका सामान्य जीव के समान शारीरिक स्वरूप नहीं है, उनकी उनका दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है, उनकी समस्त इंद्रियां दिव्य हैं, कुछ भी उनके समान या उनसे बड़ा नहीं है, उनकी विभिन्न शक्तियां हैं जैसे ज्ञान बल और क्रिया। आप लोग भी शास्त्र पढ़ते होंगे, कभी ये सारी चीज़ें पढ़े, ये सब चीज़ें शास्त्रों में ही दी गई है। आप लोग भी कुछ चीज़ों को बोलते होंगे शास्त्र है पोथी पढ़ो, है ना, ये सारी चीज़ें शास्त्रों में दी गई हैं। अब तक हम लोगों ने इनसे क्यों नहीं वाकिफ हुआ, क्यों, क्योंकि हम शास्त्र को पढ़ते नहीं हैं। शास्त्र के नाम पे कुछ लोगों ने कुछ प्रोपाउंड कर दिया है, उसी को हम शास्त्र मान करके पढ़ना शुरू करते हैं। शास्त्र में ये सब चीज़ दिया गया, बता रहे हैं कि कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान। कृष्ण की अनगिनत अनंत शक्तियाँ जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है, पर उन शक्तियों को तीन कैटेगरी में लिखा रखा गया है। चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही सारे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सबारा उपारे। भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं जिसमें से तीन चित शक्ति यानी कॉग्निटिव पोटेंसी, अंग्रेजी में उसको कॉग्निटिव पोटेंसी कहते हैं, जिससे ज्ञान होता है। देन माया शक्ति, दैट इज भगवान एक्सटर्नल एनर्जी, जिसको भगवान की और भी है संवित, संधिनी और अल्हादिनी, ये तीन शक्ति है। तो कॉग्निटिव पोटेंसी एंड देन क्रिएटिव पोटेंसी एंड प्लेजर पोटेंसी, ये भगवान की तीन शक्तियाँ हैं, संधिनी, संवित और अल्हादिनी। उसी शक्तियों को यहाँ पे और ये तीन रूप में बताया गया, चित शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति। तो चित शक्ति जो है भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसको कहा जाता है, जो माया शक्ति है भगवान की बहिरंगा शक्ति है जो दुर्गा देवी के रूप में रिप्रेजेंट होती है, अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में रिप्रेजेंट होती है, और जीव शक्ति जो है ये समस्त जीवों के रूप में रिप्रेजेंट होती है। तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। भगवान का यश कभी ना ख़त्म होने वाला यश है। भगवान ने 5000 वर्ष पहले विदाउट एनी प्रिपरेशन 45 मिनट्स के अंदर भगवद्गीता बोली थी। वो भगवद्गीता आज भी किसी भी व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस भगवद्गीता को रॉन्ग प्रूव कर सके। कृष्णा से जो कनेक्टेड है वो व्यक्ति भी आज भी प्रसिद्ध है, व्हाट टू स्पीक ऑफ कृष्णा। जो कृष्ण से कनेक्टेड है वो भी आज तक प्रसिद्ध है, लेकिन जो कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है इस पृथ्वी पे, चाहे कोई भी रहा है कितना भी शक्तिशाली रहा है, कृष्ण से किसी भी रूप में कनेक्टेड है, दुश्मन के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी के रूप में भी कनेक्टेड है, स्टिल दैट पर्सन इज नोन। पर ऐसे बहुत सारे रावण, हिरण्यकश्यप और कुंभकर्ण हुए होंगे, पर उनका भगवान से नाता नहीं होने के कारण उनको आज कोई नहीं जानता है। रावण, हिरण्यकश्यप, कुंभकर्ण ये सब कब के जमाने के हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनको स्मरण करते हैं, किसके कारण, भगवान के कारण। तो उनका यश जो है अक्षौण है। सौंदर्य, भगवान के सौंदर्य जैसा किसी का सौंदर्य नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं वेणुक्वनंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावताम समसिताम्बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि आलोल चंद्र कलशद्वन माल्यवंशी रत्नांगदम प्रणय रत्नांगदम प्रणय केली कला विलाशम श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान का सौंदर्य कैसा है, एक कंदर्प, एक कामदेव हमको जब फूल के बाण मारता है तो हमारा आकर्षण जो है अपने आप चला जाता है उसकी तरफ, उसको हम हार जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। भगवान का सौंदर्य कैसा है, करोड़ों करोड़ों कामदेव जो है भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कन्दर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। सो भगवान का ऐसा सौंदर्य है, ऐसा सौंदर्य इस जगत में नहीं है। हमारा सौंदर्य कितना भी अच्छा रहे लेकिन हमसे कोई आकर्षित कौन होगा, चाहे ऐश्वर्या राय हो या चाहे इस जगत के मिस यूनिवर्स हो, उनके सौंदर्य को देख के कोई पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा आकर्षित होते, कौन आकर्षित होता है? ज़्यादा ज़्यादा ह्यूमन बीइंग आकर्षित होंगे, है ना। और ऐसे दूसरे पशु योनियों में भी बहुत सारे सुंदर होंगे, पर क्या हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं? लेकिन भगवान की ओर सब कोई आकर्षित है। धीर समीर यमुना, यमुना जल है, यमुना आकर्षित है। हवा जो है रुक जाती है भगवान के सौंदर्य को देख करके, चलना बंद कर देती है, पत्थर मेल्ट होने लगता है। गोपियां जो है भगवान के सौंदर्य को देख करके पागल हो जाती हैं। पशु पक्षी भगवान के सौंदर्य को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। वृक्ष तक भगवान के सौंदर्य को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। ब्रह्म भागवतम में आता है, प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम रिष्ट तरवो बभुष्मत्न। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जब भगवान वेणु बजाते हुए वृंदावन में प्रविष्ट होते हैं तो उस समय वृक्ष लोग जो है भगवान के सौंदर्य को देख करके इतना मोहित हो जाते हैं कि अपनी डालों को भगवान के चरण कमल में झुका देते हैं। अपने पेड़ से असमय में फल निकाल करके भगवान को देते हैं, फूल निकाल करके भगवान को देते हैं। हाँ, मोर जो है भगवान के बांसुरी बजाना सुन करके नृत्य करता है अपना, और उनसे खुश होकर के अपना एक पंख ला करके भगवान को अर्पित करना शुरू कर देता है। अर्जुन, मैं तुमको वो ज्ञान बता रहा हूँ जो जानने के बाद इस जगत में और जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता है। उसी तरह से भगवान का वैराग्य, भगवान जो है कुछ भी चीज़ किसी भी प्रकार से छोड़ सकते हैं। कोई कितना भी आश्रित रहे भगवान से कभी भी छोड़ करके जा सकते हैं। शास्त्रों में कथन आता है, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुर एप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसाम यदगादरण्यम माया मृगम दैतेप्सित अन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये तीनों के लिए आता है, भगवान राम के लिए आता है, कृष्ण के लिए आता है, चैतन्य महाप्रभु के लिए भी आता है। गोपियाँ अपना संपूर्ण भगवान को समर्पित कर दी और ऐसे गोपियों को छोड़ करके भगवान एक सेकंड में निकल गए, कह के गए आऊँगा वापस, आए नहीं वापस लौट करके। हाँ, गोपियाँ जो है कवि लिखता है एक भजन में, आवन कह गए अजहो न आए लीनी न कोनो खबरिया मोहे भूल गए सांवरिया। हाँ, कृष्ण हमको भूल गए, कह के गए थे दो चार दिन में लौट के आ जाऊँगा, बस मथुरा नगर घूम करके वापस आ जाऊँगा, कोई खत तक नहीं भेजा। कितनी बार हम लोग उनको तड़फ तड़फ करके बुलाते हैं, हमारा सारा समाचार उन तक पहुँचाते, फिर भी रिटर्न नहीं आते। क्यों? क्या कृष्ण को उनसे प्रेम नहीं था? फिर भी डिटैचमेंट, कृष्ण अपने सेवा में लग गए, छोड़ दिया काम। उसी तरह से कहते हैं कि भगवान कृष्ण को मथुरा का राज्य जो प्राप्त हुआ, ऐसे राज्य को देवता भी प्राप्त करना चाहेंगे। वैकुंठात वरा मधुपुरी, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मधुपुरी है, मधुपुरी यानी मथुरा। ऐसे मथुरा का राज्य प्रत्येक देवता लोग भी चाहेंगे। भगवान ने मथुरा का राज्य जीता और कंस के पिता उग्रसेन को वापस दे दिया। हाँ, पूरे प्लैनेट अर्थ हस्तिनापुर का राज्य युधिष्ठिर को दे दिया उन्होंने। तो भगवान इज़ नॉट अटैच फॉर एनीथिंग। संपूर्ण पृथ्वी किसी को भी दे सकते हैं, नॉट अटैच एट ऑल। और क्या किया, अपने आप को भगवान जो है उन भक्तों का सर्वेंट बन करके रहे। युग्रसेन के दरबार में बैठते थे अजय दरबारी। युधिष्ठिर महाराज के घर में भगवान आकर के राजसु यज्ञ में लोगों का चप्पल संभालने का सेवा लेते हैं। अर्जुन के स्वामी होते हुए भी, इस जगत के स्वामी होते हुए भी अर्जुन का ड्राइवर शॉफर बन करके उसका रथ चला रहे हैं। अर्जुन युद्ध में उनको लात मारता है दाएं बाएं ऊपर नीचे, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि दाएं घूमो बाएं घूमो ऊपर घूमो नीचे घूमो। हाँ, गाड़ी रोको तो नीचे लात, आगे चलो तो ऊपर लात, दाएं टर्न करो तो राइट साइड में, हाँ बाएं साइड में टर्न, लेफ्ट साइड में लात मारता है। क्यों? क्योंकि युद्ध में वो बोल पा नहीं था, तो भगवान उसके लात भी खा रहे हैं। किसके लिए? संपूर्ण जगत के स्वामी है, लेकिन उनको अपने मान मर्यादा का कोई चिंता नहीं है। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस महाभारत युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि कल मैं कृष्ण को शस्त्र उठवा के दिखाऊंगा, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दिया। क्यों? मेरे भक्त की बात जो है नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त की बात गलत सिद्ध नहीं होनी चाहिए। मुझे लाख कोई कुछ भी कहे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेगा, बोलेगा इसको अपने जबान में कोई वैल्यू नहीं है, अपना कोई वैल्यू नहीं करता है। तो चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे भक्त की बात जो है वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। भगवान जो है त्याग देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, अयोध्या का राज मिलने वाला था, सुबह सुबह उनको ताज मिलने वाला था, कैकेयी ने रात में कुछ ड्रामा कर दिया, और सुबह सुबह ड्रामा करके कैकेयी ने उनको क्या किया, बोला जंगल में जाओ 14 बरस के लिए विदाउट एनी अटैचमेंट। ये क्या चल रहा है, ये सब क्यों कर रहे हो? बिना कुछ कहे भगवान रामचंद्र जी वलकल वस्त्र धारण करके अपनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ में जंगल की ओर चले गए विदाउट लुकिंग बैक। और वहाँ तक भी गए, दशरथ महाराज ने जबरदस्ती उनको रथ पे भेजा, तो रथ कहाँ तक लेके गए, श्रृंगवेरपुरम तक, अयोध्या का जो बाउंड्री था, श्रृंगवेरपुरम ले जा करके सुमंत को रथ के साथ लौटा दिए, धरती पर बिना चप्पल के चलने लगे। जो राजमहलों में भगवान सोते थे, और वो भगवान आज पत्ते की सैया बिछा करके जमीन पे भूमि पे शयन कर रहे हैं। हाँ, उनको किसी चीज़ से कोई आशक्ति नहीं है। किसके लिए आए थे जंगल में? देवताओं की इच्छा से, देवताओं के कर्तव्य को निभाने के लिए। तो भगवान को किसी चीज़ से आशक्ति नहीं है, इसीलिए भगवान वैराग्य के प्रतिमूर्ति हैं। सो भगवान एक हैं, अनेक हैं। इसके उत्तर में बताते हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य एक है, अनेक है, एक ही है ना, अनेक है, तो उसके कितने नाम हैं। कुछ लोग सूरज कहते हैं, अंग्रेजी में सन कहते हैं, कुछ लोग दिवाकर कहते हैं, भास्कर कहते हैं, सोल कहते हैं, ये मैक्सिकन लैंग्वेज में सोल कहते हैं सूर्य को। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज में बहुत सारे नाम होंगे, आदित्य, सूर्य, भानु, लेकिन सूर्य एक ही है ना। उसी तरह से चाहे उसको किसी भी नाम से रिफर करो, भगवान कौन है, एक है। और ईश्वर परमः कृष्ण, भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है, कृष्ण है। हाँ, क्यों कृष्ण है, राधा गोपीनाथ प्रभु अभी बताएंगे। भगवान एक और नाम अनेक हैं। श्री कृष्ण सर्वाकर्षक, ये अर्थ होता है कृष्ण का। उनके नाम है राम, सबको आनंद देने वाले, अल्लाह सर्वशक्तिमान, जेहोवा परम दयालु, भगवान षड ऐश्वर्यों के स्वामी, परमात्मा। इस तरह से भगवान के अनेक नाम हैं, उसके पीछे उनके कुछ गुण हैं। भगवान के नाम के दो प्रकार हैं, एक सेकेंडरी नेम, एक प्राइमरी नेम। प्राइमरी नेम जो है उनके जो भक्त हैं उनको देते हैं वो नाम है, जैसे नंदन नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन। हाँ, और सेकेंडरी नाम क्या है, जो उनके गुणों के कारण उनको मिलता है वो सेकेंडरी नाम है भगवान के। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, साकार है, निराकार है, हम लोग ये विषय कल थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे।